ओम शांति। आप सभी का शांतिवन परिसर के इस डायमंड हॉल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ परमपिता परमात्मा शिव बाबा को, जो हर पल हमारे साथ हैं और हमारे मुस्कुराने की वजह है। आप सभी शांतिवन परिसर में सभी के चेहरे पर एक अद्भुत दिव्य मुस्कुराहट देख ही रहे होंगे, और ये मुस्कुराहट परम पिता परमात्मा की सौगात है। तो मैं अब मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे सभी माननीय अतिथियों को, जो अपने अनुभव से हमें उस सागर की गहराई में ले जाएंगे। मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता बीके पांड्यमणि भाई जी, भ्राता श्री रामकृष्ण गौर जी, चेयरमैन ऑफ तेलंगाना फिल्म चैम्बर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ फिल्म हैदराबाद, राजयोगिनी बीके लक्ष्मी दीदी, राजयोगिनी बीके दिव्या दीदी, डॉक्टर भ्राता ए के मर्चेंट, राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, ब्रदर बीके गोलोपिस, साथ ही मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता संतोष जी एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया, पूनम दीदी सब जोन हेड ब्रह्मा कुमारी जयपुर, साथ ही ऑनरेबल गेस्ट श्रीमती किरण बेदी जी उपराज्यपाल गवर्नर ऑफ पांडिचेरी, ऑनरेबल रामदास बंधु आठवले मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दादियों की उपस्थिति भी हम यहाँ पर अनुभव करेंगे, और सभा में ऐसा अनुभव कि हम सब उस गहराई में स्वतः ही चले जाएंगे। साथ ही आमंत्रित करती हूँ बीके हरीश भाई हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग आरईआरएफ। मैंने जिनका भी बहुत सम्मान के साथ नाम लिया, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आसीन हूँ और मंच की शोभा बढ़ाएं। और आप सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वास्तव में हम ये महसूस करते हैं कि एक चिंगारी ही काफी है क्षमा सुलगाने के लिए। आप सभी काफी हैं सभा में क्रांति लाने के लिए। तो जोरदार एक बार तालियों से स्वागत अभिनंदन हमारे अतिथियों का। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। आप सभी की उपस्थिति भी हमें बहुत सुकून दे रही है, क्योंकि आप सभी 3 दिन से इस प्रांगण में अच्छे विचारों का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से ही आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आप सभी के संपर्क में हूँ, और साथ ही सबसे बड़ा संपर्क उस परमपिता परमात्मा का, जिसके लिए कभी भी नेटवर्क उपलब्ध है और आप अपने विचारों की श्रेष्ठता को अनुभव कर सकते हैं। तो अभी हमारे अतिथि मंचासीन हो रहे हैं और तत्पश्चात हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छे विचारों की क्रांति, विचारों की श्रेष्ठता, आज क्या कहूं, आपकी विदाई या बधाई, आपकी विदाई दूं या आपको अच्छे विचारों की, अच्छे जीवन की शुरुआत करने की बधाई दूं। वास्तव में परमात्मा के घर में जो भी आता है उसे हम विदाई नहीं देते, बधाई देते हैं। हमारी आदरणीय दादी जी, भूतपूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी हमेशा हम सबको गोसुन और कमसुन की टोली यानी भोग खिलाती थी। यानी आप आए हैं जाने के लिए नहीं, पुनः पुनः यहाँ आने के लिए, क्योंकि ये आपका घर है, आपका परिवार है। और जब आप अगली बार आए तब परिवार के आप सदस्य बन जाएंगे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। और ये ब्रह्म कुमारी परिवार, इस परिवार से जुड़ने के बाद विचारों की क्रांति निश्चित रूप से आती है। तो चलिए हम कुछ पलों के लिए परमपिता परमात्मा की दिव्य स्मृति में बैठते हैं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत यदि परमात्मा की याद से की जाए तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती ही है। तो कुछ पल हो जाते हैं उस परम शक्ति के अद्भुत प्रेम में, दिव्य प्रेम में। आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, मन हुआ खुशियों से भारी, सच्चे मन से दी थी आवाज, कबूल हुई प्रार्थना हमारी। अभी हमारे मंचासीन अतिथियों का, हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने बुके और बैचेस के द्वारा स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगी। आप आ गए हैं, आप आ गए हैं तो सभा में आ गया है निखार, आप आ गए हैं तो सभा में आ गया है निखार। कैसे कहूं कि दिल में आज क्या है उद्गार, आपका इस भव्य सभा में स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। मंचासीन अतिथियों का भी और साथ ही आप सभी का। तालियों की गड़गड़ाहट यदि जारी रहे तो आप सभी को भी और मंचासीन अतिथियों को भी बहुत बहुत खुशी होगी, और साथ ही आप सभी के हस्तों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी दबते रहेंगे। आज विदाई का दिन है तो बधाई का भी, तालियां चालू रहें, जारी रहें, और ये आवाज की गूंज पूरे विश्व में पहुंच जाए, ताकि विश्व में भी एक क्रांति आ जाए कि परम शक्ति इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। आदरणीय तालियां बजती रहे, दिल के इस स्वागत के बाद गीतों के माध्यम से स्वागत है। मन में कोई गीत तो गुनगुना दीजिए मधुर वाणी ग्रुप, कोई दुख हो या उलझन हाल सुना दीजिए। है मन में अगर प्रेम तो मुस्कुरा दीजिए, जो चलना हो साथ तो हाथ बढ़ा दीजिए। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ मधुर वाणी ग्रुप, सतीश भाई, भानु भाई और साथी, उनका साथ दे रही हैं हमारी बहनें, मधुर वाणी ग्रुप।
ओम शांति। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। जब तलक बीत जाती न कली रात्रि है, जब तलक हो न जाता सुखद प्रात है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। जोरदार तालियों के साथ आप अपना अभिनंदन स्वीकार करें।
बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ। जब तलक बीत जाती नहीं रात है, जब तलक हो न जाता सुखद प्रात है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है।
खातिर बनी ये प्रभु योजना, मूल्य आध्यात्म की हो पुनर्स्थापना। इसके खातिर बनी ये प्रभु योजना, आप आए हमें तो बड़ा हर्ष है, आप आए हमें तो बड़ा हर्ष है। वो निश्चित ही भारत प्रभु उत्कर्ष है, हर हृदय में आनंद आनंद है। प्रिय बधाई की वेला समारंभ है, ये समापन ही ये शुभारंभ है।
प्यारा परिवार प्रभु पल को पल देखिए, वादियों में मनोहर झलक देखिए। प्यारा परिवार प्रभु पल को पल देखिए,
आतियाहट है सरलिंद हाँ की सुने, आतियाहट है सरलिंद हाँ की सुने। मुस्कुराहट वो अधरों पर देखिए, गुरु होगा भारत प्रकाश स्तंभ है। प्रिय बधाई की वेला समारंभ है, ये समापन ही ये शुभारंभ है।
लेके मंदिर तलक चलना है कारवा, 80 वर्षों की सेवा सुनी दासता, लेके मंदिर तलक चलना है कारवा। आते रहिए यूं ही मिलते रहिए सदा, आते रहिए यूं ही मिलते रहिए सदा। बांटते रहिए सम्मान की संपदा, इसमें ही तो प्रभु प्रेम मचरंद है।
प्रिय बधाई की वेला समारंभ है, ये समापन ही ये शुभारंभ है। प्रिय बधाई की वेला समारंभ है, ये समापन ही ये शुभारंभ है। जब तलक बीत जाती नहीं रात है, जब तलक हो न जाता सुखद प्रात है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है। प्रिय बधाई की वेला समारंभ है, ये समापन ही ये शुभारंभ है, ये समापन ही ये शुभारंभ है, ये समापन ही ये शुभारंभ है।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, ये समापन नहीं शुभारंभ है। और भाव यही था कि एक मुस्कुराहट तो अपने चेहरे पर ले आइए। जिंदगी जीने के लिए अरमान जरूरी है, हर खुशी पाने के लिए इम्तिहान जरूरी है। दिल में चाहे हजारों गम हो, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूरी है, मुस्कान जरूरी है। तो प्यार भरी मुस्कुराहट अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति के लिए। छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक है। श्री रंगम भरत नाट्यालय बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नृत्य के माध्यम से अतिथियों का स्वागत बारंबार। तालियों की आवाज थोड़ी और जोरदार हो जाए तो बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ जाए। बीज बो दो तो फूल खिलकर चमन को बाहर कर देंगे और दिशा दे दो नौजवानों को तो राष्ट्र को संवार देंगे, तो राष्ट्र को संवार देंगे। तो मैं अभी एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अहमदाबाद के भरत भाई एवं नाथी बहन जहाँ भी हो वो मंच के पीछे पहुंच जाए। हमारे मृत्युंजय भाई जी इन कन्याओं का स्वागत कर रहे हैं, ईश्वरीय सौगात देकर अभिनंदन स्वागत, और साथ ही विशेष इनकी जो टीचर हैं वो भी स्टेज पर हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आसमान का चांद आपकी बाहों में हो, आप जो चाहें आपकी राहों में हो, हर ख्वाब हो पूरा जो आपकी आंखों में हो, खुशकिस्मती की हर लकीर आपके हाथों में हो, आपके हाथों में हो। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता पांड्यामणि भाई जी को, डॉक्टर बीके पांड्यामणि भाई, डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। आपके लिए यही कहती हूँ कि पंखों में अगर जान हो तो उड़ान कुछ नहीं है, दिल में अगर अरमान हो तो आसमान कुछ नहीं है, मन में अगर दृढ़ता हो तो चट्टान कुछ नहीं है, और आपकी उमंगों के आगे तूफान कुछ नहीं है, आपकी उमंगों के आगे तूफान कुछ नहीं है। तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता पांड्यामणि भाई जी को।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 80th एनिवर्सरी तथा अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन गॉड्स विस्टम फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की अंतिम कड़ी पर हम पहुंच गए हैं। अभी आपने सुना है ये समापन समारोह नहीं है, ये शुरुआत है ये नई जिंदगी की। तो इस समापन समारोह में पधारे हुए तो अतिथि कन सबको स्वागत करने में मैं अपने को गौरव अनुभव करता हूँ। सबसे पहले आज का विशेष अतिथि इस कार्यक्रम का जो वैलिडिटी एड्रेस देने के लिए पहुंचने वाले हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी ऑनरेबल श्रीमती किरण बेदी को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से पधारे हैं ऑनरेबल रामदास बंधु अथवाले जी, जो चीफ गेस्ट हैं, उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा इस कार्यक्रम का जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, जो ब्रह्मा कुमारी इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है राजयोगी बीके मृदुन जी, को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी इस वैलिडेटरी फंक्शन में गुड विशेष देने के लिए जो पहुंचे हैं नेशनल ट्रस्टी एंड सेक्रेटरी जनरल लोटस टेंपल एंड बहाय कम्युनिटी ऑफ इंडिया डॉक्टर ए के मर्चेंट जी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जो आज का जो रिजोल्यूशन प्रपोजल देने वाले हैं एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया की मिस्टर संतोष भाटिया जी को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो पिलर्स का है, जो हमारा महाराष्ट्र जोन की जोनल इंचार्ज है राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी संतोष बहन जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैसूर से पधारे हुए हमारे सब जोनल इंचार्ज ब्रह्म कुमार की राजयोगिनी बीके लक्ष्मी बहन का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुंबई से पधारे हुए बोरीवली की हमारे सब जोनल हेड राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी दिव्या बहन को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी हमारा जयपुर से पधारे हुए सब जोनल हेड राजयोगिनी बीके पूनम बहन को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में स्पेशल भाग लेने के लिए हमारा इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की हेड ऑफ द प्रोजेक्ट ब्रदर बीके गोला बिल्स को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा ब्रह्म कुमार की राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग है उसका हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर ब्रदर बीके हरीश भाई जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। Last but not at the least, I invite Sister Rajyogini B.K. Manju Behen, who is Master of Ceremony, unko bhi mai swagat karta hun. Om Shanti.
बहुत ही सुंदर, बहुत ही कम शब्दों के माध्यम से आप सभी का स्वागत अभिनंदन किया. अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ खास हमें मोटिवेट करने के लिए, उमंग उत्साह से भरपूर करने के लिए आदरणीय राजयोगिनी बीके लक्ष्मी दीदी जी को, जो सब जोन हेड ब्रह्मा कुमारी मैसूर से हैं. आपके लिए यही कहना चाहती हूँ कि एक विदुषी नारी मुर्दों को जगा सकती है, उंगली से हिमालय को हिला सकती है. ये देश है जहाँ नारी माँ बनकर भगवान को भी गोद में खिला सकती है, भगवान को भी गोद में खिला सकती है. आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी.
ओम शांति. आदरणीय मंच तथा गौरवान्वित सभा के सब भाई बहनों प्रति मैं बहुत बहुत आप सबका आभार अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आज के संपन्न समारोह में आप सभी ने चार दिन से लगातार 80 वर्ष के ये महा वार्षिकोत्सव प्रति जो लगातार बड़े धूमधाम से चला हुआ इस कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित होकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को, सांस्कृतिक सम्मेलन को सफल किया है, तो इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत दिल से बधाई दे रही हूँ. आप सब जानते हैं ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 80 वर्ष के पहले 250 तपस्वियों से चालू होकर के आज 10-15 लाख जनसंख्या के ऊपर राजयोगी उनका वृक्ष वटवृक्ष बना हुआ है. जो ये संस्था अपने ही सहारे के पंखों से सारे विश्व में फैला हुआ है, बड़े गर्व की बात है. ये एक ही संस्था है जो महिलाओं द्वारा सारे विश्व में 80 वर्ष क्या आगे भी सुचारू रूप से संस्था को बहुत ही अच्छा आगे बढ़ाने का सेवा हो रही है, इसका पीछे बहुत बड़ी महान शक्ति है. क्योंकि ये संस्था परमात्मा ने जो महावाग्दान किया है, धर्म ग्लानी में मैं आऊंगा, साधारण प्रकृति का आधार लूंगा. इसी वाग्दान के अनुसार परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इस संस्था को स्थापन किए हुए 80 साल को मैं बहुत खुशी से इसका सम्मान कर रही हूँ. मैं बहुत खुशी से, दिल से इस महान कार्य को बहुत संतुष्ट हो रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले 50 साल से इस ईश्वरीय सेवा में अपने जीवन को समर्पण करते हुए सेवा करते मुझे बहुत ही अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है. हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, हमारे जगत माता मम्मा, हमारे सब पूज्य दादियों ने, जिन्होंने अपना श्रेष्ठ साधना द्वारा, अपना समर्पण त्याग तपस्या द्वारा इस वट वृक्ष को इतना उन्नति किया है, उन सबके दुआओं से, आशीर्वाद से हमारी ये संस्था इतना सफलतापूर्वक आगे जा रही है. हम सभी, हमारी पूज्य दादियों ने, बाबा मम्मा ने जो किया है, उसका फल अभी हम सभी को प्राप्त हुआ है। इस संस्था में जो हमें परमपिता परमात्मा पिता के रूप से माता के रूप से जो ज्ञान दिया, तमेव माताश्च पिता के रूप से वो ज्ञान प्रैक्टिकल में इस संस्था में जो 135 देशों में 10-15 लाख लोगों ने जो अनुभव कर रहे हैं, हम सभी वसुदेव कुटुंब है। वैसे ज्ञान है शास्त्रों में ग्रंथों में गाते हैं वसुदेव कुटुंब केवल भाषण में, लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल में हम सभी एक परिवार का वसुदेव कुटुंब का सच्चे अनुभव हर दिन हर केंद्र में हम करते हैं। कोई भी भाई बहन इस संस्था में आते हैं, उनका जाति धर्म क्वालिफिकेशन आदि पूछने की दरकार ही नहीं है, उनको हृदय से वेलकम करते हैं, क्योंकि हमें ये शुभ संकल्प है वे ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा परमपिता परमात्मा का सच्चा परिचय प्राप्त कर ले और परमात्मा का बच्चा मैं कैसे हूँ ये अनुभव कर ले, जिससे उनके जीवन सफल हो जाए। तो इसी कारण इस संस्था में सब लोगों को हम स्वागत करते हैं और यहाँ पर परमात्मा जो पिताश्री ब्रह्मा द्वारा परम शिक्षक के रूप में जो ज्ञान शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान शिक्षा जो मूल्यों का शिक्षा आज सारी दुनिया में कोई भी विश्वविद्यालय में नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे मूल्यों को प्राप्त करके जो बड़े डाकू भी योगी बन जाते हैं। आज भी हम लोग सारे देश में कई कारागृहों में क्लासेस चलाते हैं, जिसमें कैदी लोग ये ज्ञान को प्राप्त करके उनका जीवन योग्य बनाए हैं, बना रहे हैं। मैसूर में भी एक कारागृह में हर दिन रेगुलर ये क्लासेस चलता है, जिससे कई कैदी लोग इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में जो अपराध किया उसको रियलाइज करके अपमूल्यों को परिवर्तन करके अपने जीवन में मूल्यों को धारण करके सच्चा जीवन योगी जीवन अनुभव कर रहे हैं। और इसके अलावा जो विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज हम देख रहे हैं शिक्षा जो भी मिल रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई मूल्यों का स्थान नहीं है। कोई भी युवक युवतियों को यूथ वर्ग को उनके जीवन में जो अपमूल्य है उनको कोई भी शिक्षा से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे ये अनुभव है गवर्नमेंट के तरफ से मूल्यों की शिक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास टीचर्स को भेजते हैं। टीचर्स लोग 10 दिन हमारे पास रह करके, वो भी टीचर्स कैसे हैं, उन्होंने अंदर भी दारू पीने का आदि आदि जो अपमूल्य है उन्होंने को चूज करके भेजते हैं, ताकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा उन्होंने का जीवन परिवर्तन हो जाए। सचमुच वो लोग जब इस ट्रेनिंग में आते हैं ज्ञान शिक्षा प्राप्त करके उनका अपना जीवन का महत्व को अनुभव करके जीवन परिवर्तन कर लेते हैं। करने के बाद ये कहते केवल हम शिक्षकों को ही नहीं, हमारे जो बड़े स्तर में अधिकारी लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग चाहिए, उनका जीवन के द्वारा वे भी चाहते हैं अपने बड़ों को ये शिक्षा मिले। उसके अलावा उनके स्कूलों में जो बच्चे हैं जो शैतानी करते हैं उन्हों को चूज करके भेजते हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, वो लोग कभी उन बच्चों को अपने कंट्रोल में रख नहीं सकते हैं। जब हमारे पास वे आते हैं वो यहाँ पर ज्ञान शिक्षा को प्राप्त करके इतना शांत सौम्य रूप से चलते हैं और अपना जीवन को परिवर्तन करते हैं, जाते समय रोते हैं। हमारा जीवन कैसे था, हमें ऐसा कोई शिक्षा स्कूलों में नहीं मिला, तो यहाँ पर ऐसे मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करके बच्चों से लेकर बड़ों तक अपना जीवन परिवर्तन करके सच्ची मानव जीवन का, क्योंकि आज मानव दानव बन गया है तो मानव जीवन का अनुभव करते, मानव से देव मानव बनने का प्रयास यहाँ हर रोज सिखाया जाता। और यहाँ पर जो शिक्षाएं मिल रही है हर वर्ग के, हमारी संस्था के अंदर 20 वर्ग है, वुमेन्स है, यूथ है, सभी वर्गों के लोगों को भी उनके अपने अपने वर्गों का ज्ञान के अलावा सभी के जीवन अपमूल्यन से तांड नृत्य कर रहा है, जिससे मनुष्य का जीवन दुख और शांति में बस गया है, जिसे कोई निकाल नहीं सकते। तो वे लोग भी यहाँ पर जब हमारे वर्गों की सेवा में भाग लेते हैं तो उन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राप्त करके जीवन परिवर्तन करते हैं। तो कहने का मतलब है ये ज्ञान जीवन को मूल्यों का ही धारण करने का एकमात्र साधन है। इसके अलावा मन की सफाई, तन की सफाई, संबंधों की सफाई, गृहस्थ की सफाई, व्यवहार की सफाई, चारों तरह के सच्ची जीवन की सफाई यहाँ पर सिखाया जाता। जो योगी जी राजयोगी बन जाते, ज्ञान सीखते हैं, अपना जीवन के सर्वतो भाग में अपने चारों प्रकार के चारों दिशा में अपना जीवन को पवित्र बना के, शुद्ध बना के, सफाई सच्ची जीवन अपना करके जीवन धन्य करते हैं। ऐसी सेवा करने को हमें मौका मिला है, ऐसा सेवा करते करते हमारा जीवन सार्थक हो रहे हैं। ऐसा जीवन जो मिला इस संस्था के द्वारा, मैं परमपिता परमात्मा को, हमारे पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा को, हमारे पूज्य दादियों को और आप सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ।
वाकई में हमें ज्ञान की लक्ष्मी से आपने भरपूर कर दिया दीदी जी। जब चारों ओर अंधेरा हो, आपने कहा बाबा का दीप जला लेना, जब गमों ने तुमको घेरा हो तुम हाल बाबा को सुना देना, जब कोई तुम्हें रुलाए तुम बाबा के गीत गुनगुना लेना, बाबा करुणा का सागर है आप उसमें डुबकी लगा लेना, आप उसमें डुबकी लगा लेना। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी बीके दिव्या दीदी जी को, सब जोन हेड बोरीवली मुंबई। आपके लिए यही कहती हूँ कि नफरतों की नहीं कोई बयार है नारी, माँ की ममता है बहन का प्यार है नारी, ये नए रिश्तों को बखूबी निभा लेती है, आन पे बन जाए तो तलवार है नारी, तलवार है नारी। आदरणीय दिव्या दीदी जी।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारी वरिष्ठ बहन संतोष बहन और अन्य भी हमारे साथी भाई बहने और मेहमान और सन्मुख उपस्थित, जो चार दिन से जिस विषय पर श्रवण कर रहे हैं ऐसे प्रिय भाई और बहने, आप सबसे एक प्रश्न पूछने का मन करता है। आज इस विषय को लेकर के हम यहाँ चर्चा चार दिन से कर रहे हैं और आज समापन का दिन है। क्या जिस विश्व में हम अभी प्रेजेंट समय रह रहे हैं, क्या वो दुनिया, संसार, विश्व, क्या हमें पसंद है? जिनको पसंद है वो हाथ उठाए कि अभी की दुनिया पसंद हो। बहुत कम लोग हैं। इसे समझ में आता है
किस विश्व में बदलाव की आवश्यकता है। जब ये विषय मेरे सामने आया, मुझे अपना बचपन याद आया। बहुत छोटी थी, इतना होश भी नहीं संभाला था, लेकिन तभी भी मन में ये सोच चलता था। मुझे तो पता नहीं, मेरे पिताजी मुझे सुनाते हैं कि बचपन के कुछ आपके प्रश्न ऐसे थे कि जवाब देना मुश्किल। मैं कहीं बाहर उनके साथ जाती थी, खड़ा करती थी और उनसे पूछती थी कि पिताजी, ये दुनिया है मनुष्य के रहने के लिए, मानव के लिए ये विश्व इस तरह का बना हुआ है कि और भी कोई दुनिया मानव के लिए है? कहते थे भी, मैं भी सोचता था कि अभी क्या जवाब दूं। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर मुझे मेरे उस बचपन का प्रश्न का जवाब मिला कि ये दुनिया ये मानव के लिए नहीं है और एक दुनिया है और एक संसार है, हमें उसको बनाना है। क्योंकि जो व्यक्ति जहां उपस्थित होता है, रहता है या कुछ समय भी खड़ा रहता है जहां पर, उनके अपने सोच का संसार है। एक संसार नहीं, इस विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबके संकल्प सोच का अपना अपना संसार है और वो संकल्पों के संसार में परिवर्तन होगा तो ये संसार अपने आप में बदल जाएगा। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि कई संगठन के बीच में भी कई बैठे हुए होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अभी आप किस दुनिया में हो, उनके विचारों की दुनिया अपनी होती है, संसार अपना होता है। व्यक्तिगत मुझे अपना संसार कैसा बनाना है, ये मेरे सोच पर आधारित है। परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही है कि हमारे जीवन में, हमारे संसार में संकल्प एक बीज है और जब किसान भी अपने खेतों में बीज बोना चाहता है तब बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा बीज बोना पसंद करता है, क्योंकि फसल अच्छी हो, फल फूल अच्छे हो। मेरे जीवन के अंदर भी मेरे सोच का बीज, संकल्प का बीज कैसा है, वो मेरा संसार है। इसलिए हमें व्यक्तिगत हमारे संकल्पों को, सोच को श्रेष्ठ, शुभ, शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। और वो होगा कैसे? और इसीलिए ही आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता वर्तमान समय पर सबको उसकी आवश्यकता फील हो रही है। उसकी मैं तीन बातें आपके आगे रखूंगी कि सबसे पहले हमारे सोच में परिवर्तन लाने के लिए, संकल्प को बदलने के लिए, हमारी सोच को पावरफुल और श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा ने हमें ये कहा कि आप जो दिखाई देते हो वो आप नहीं हो। जो नजर नहीं आ रही है वो एक शक्ति, एक पावर, सोल, आत्मा है। ये ज्ञान का बीज जो परमात्मा ने हम सबके अंदर डाला, उन्होंने हमारी दृष्टि बदल दी। और कहते भी हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सर्वप्रथम आत्मिक दृष्टि, जो सूक्ष्म चेतना है उन तक पहुंचने की दृष्टि दी परमात्मा ने हमें, और उस दृष्टि से विश्व सारा अपना लगने लगा। जो मिले उनको हमसे अपनापन फील होने लगा। जो भेद थे भाषा के, रंग के, जाति के, वो भेद मिट गए। स्नेह बढ़ा, एकता बढ़ी, आपसी एक दूसरे पर विश्वास बढ़ा। तो ये दृष्टि का परिवर्तन एक नॉलेज से, और उससे सृष्टि भी एक अनोखी अलौकिक दिखाई देने लगी। जो हम यहाँ कहते हैं हम सब आपस में भाई भाई है, वो भाव जागृत हुआ, वो भावनाएं जागृत हुई। दूसरी बात कि परम सत्य को पहचाना। अब पता चला है कि संसार दुखी अशांत भ्रष्टाचारी क्यों हुआ है, क्योंकि उस परम सत्य से हम सब दूर हो गए। और जब सत्यता से दूर जाओ कभी जीवन में सुख हो नहीं सकता है, ये लॉ है। अब परमात्मा ने हमें इतना समीप का संबंध जोड़ दिया अपने से कि आप मेरे बच्चे हो, लाडले हो, मेरे राजा बच्चे हो, मेरे मीठे बच्चे हो। वो सत्य से हम समीप पहुंच गए, और सत्य के समीप जाने से सत्य की सही पहचान होती है। किसी भी व्यक्ति को यथार्थ पहचानना हो तो उनके समीप जाना जरूरी होता है, और वही सच्ची पहचान होती है। परम सत्य के समीप जाने से उनकी यथार्थ पहचान होती है, उससे वो प्यार, वो शक्तियां, सद्गुणों की अनुभूति होती है, और उससे हमारे जीवन में सद व्यवहार आ जाता है। जो संसार को बदलने में सद्व्यवहार की आवश्यकता है। तीसरी बात, समय की पहचान। वर्तमान समय जो हम सब चाहते हैं कि अब ये विश्व बदलना चाहिए, और इंतजार है सबको कि कब बदले, जल्दी बदले, ये सबका सोच है, सबका संकल्प है कि जल्दी से चेंज हो। तो अब वो समय है परिवर्तन का, बदलाव का, और परमात्मा इस विश्व को बदलने का कार्य भी कर रहे हैं, और वो समय भी है। और परमात्मा कल्याणकारी है, तो विश्व को जो बदलेंगे वो कल्याणकारी हमारे लिए संसार बनाएंगे, हमारे सुखों का संसार वो बनाएंगे। तो जब समय कल्याणकारी, परमात्मा कल्याणकारी, इस मौके का यदि हमने लाभ नहीं लिया तो मैं अपने संसार को भी कब बदलूंगी, और इस संसार को भी कब चेंज आएगा। इसलिए ये वक्त, ये मौके का पूरा लाभ हमें उठाना है। और इस विद्यालय का बहुत अच्छा स्लोगन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी मैं अपने संकल्पों के संसार को चेंज नहीं करूंगी तो फिर कभी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि अभी परम सत्य की शक्ति मेरे साथ है, और समय भी वो है। इस वक्त पर न करूं तो मैं कब करूंगी। तो ये समय की पहचान, जिसको हम समझे, और यही आध्यात्मिक ज्ञान हमें विश्व को बदलने में मदद करता है। सिर्फ अभी हम सब में दृढ़ता, एक आत्मविश्वास और हिम्मत की जरूरत है, और हमारा साथी स्वयं वो परम सत्य भगवान है। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। सफलता हमारा अधिकार है, विजय है हमारा, सिर्फ हम अपने संकल्पों को आध्यात्मिक ज्ञान से उसको चेंज करें तो ये संसार बदल ही जाएगा। और इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा ने दिया है उससे वर्तमान समय पर भी, इस दुख भरे अशांत संसार में भी हमें अनुभूति होती है कि मेरा व्यक्तिगत संसार बहुत शांत, सुखमय, आनंदमय है। और आज समापन समारोह के समय पर आप सबसे भी निवेदन, प्रार्थना कहो, शुभ भावना कहो, रिक्वेस्ट कहो कि अपने संकल्पों के संसार को बदलो, ये संसार बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर दीदी जी, जैसा आपका नाम वैसे ही शब्दों के माध्यम से आपने दिव्यता की अनुभूति कराई कि कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता डॉक्टर A.K. मर्चेंट जी को, नेशनल ट्रस्टी एंड सेक्रेटरी जनरल लोटस टेंपल बहाई कम्युनिटी ऑफ इंडिया, भ्राता डॉक्टर A.K. मर्चेंट।
सर्वप्रथम ओम शांति। कितने भाग्यशाली हम सब हैं कि आज यहां बाबा के दरबार में एकत्रित हुए हैं। और 80 वर्ष पूर्व जो नींव उन्होंने रखा था उस दिवस को हम याद कर रहे हैं। 80 वर्ष काफी लंबा समय होता है और कितना विकास, कितनी प्रगति, उन्नति हुई है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, बहाई समुदाय की तरफ से अभिनंदन, अभिवादन के इतने अच्छे उत्सव में हमें भी सौभाग्य मिला है भाग लेने का। मेरा संबंध प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्व विश्वविद्यालय के साथ बहुत समय से रहा है। दादी प्रकाशमणि जी को मैं याद करता हूं, दादी जानकी जी जो यहां उपस्थित नहीं हो पाई है, हमारे भ्राता ब्रिजमोहन जी, राजयोगिनी बहन आशा जी, क्योंकि दिल्ली में हमारा आदान प्रदान होते रहता है, हर वक्त हमें मौका मिलता है सर्वधर्म मंच पे आने का। रक्षाबंधन के समय पर बहन बीके सविता जी अपने घर आती है, भाई रघुनंदन जी है नोएडा के, यहां पर भी पिछले 2-3 दिवस से भाई रघु जी बहुत सेवाएं दे रहे हैं। और मुख्य रूप से मुझे यहां आने का कारण मुझे लगता है कि भ्राता बीके मृत्युंजय जी के वजह से है। स्वर्गीय बहन बीके शांति जी को मैं याद करता हूं, क्योंकि मैं ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में रहता हूं तो सीरी फोर्ट सेंटर पे जाता था। नोएडा से हमारे स्वर्गीय भ्राता प्रकाश जी को का भी मुझे याद आता है, उनका भी कितना स्नेह संबंध था हमारे के साथ। और यहां उपस्थित सभी बीके भाई और बहनों जिनके नाम इस प्रकार है, अभी हमने सुना डॉक्टर बीके पांड्यमणि भाई साहब को, राजयोगिनी बीके लक्ष्मी बहन को, राजयोगी बी के दिव्या बहन को और यहां मंच पर आसीन उपस्थित राजयोगिनी बी के संतोष बहन को तो मैंने बताया, हमारे एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया के श्री संतोष भारतीय जी, राजयोगिनी बी के पूनम बहन जी और हमारे महामहिम पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय डॉक्टर किरण बेदी जी जो आने वाली है। तो इस तरीके से उपस्थित आध्यात्मिक भाइयों और बहनों, ये एक खुशी का दिन हम बिता रहे हैं और ये हमारे लिए एक जीता जागता प्रतीक है कि संसार के बदलाव की जो हम बात कर रहे हैं, जो घोर परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक जागरूकता लाने की बात हो रही है और ईश्वर से निकटतम कैसे मानव आ सके, उसके लिए जो भी पहल, जो भी संघर्ष और सेवाएं दी जा रही है उसका अवश्य ही एक बहुत ही सुंदर और अच्छा परिणाम होगा। ये हमारे लिए अगर स्वर्ग का प्रतीक है तो बाहरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो वास्तविकता को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि आज समस्त मानव जाति के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। मैं अंग्रेजी साहित्य के छात्र होने के साथ साथ मैं विज्ञान का भी छात्र हूं, तो भाइयों का ये विश्वास है कि अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें धर्म, धर्म की जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं उसके साथ साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी संपूर्ण सहारा लेना पड़ेगा। आज समस्त मानव जाति विविधता की एकता को आत्मसात करने के लिए, संपूर्ण विश्व को एक देश की दृष्टिकोण में पहचानने के लिए अग्रसर हो रहा है, लेकिन कुछ मैक्रो लेवल मोटी बातें हैं जो बहुत बड़ी बाधाएं भी है हमारे सामने, क्योंकि एक और तो सदियों हजारों वर्षों से जो सभ्यता का विकास हुआ है वो समस्त संसार को एक पूर्णता और परिपक्वता की ओर ले जा रहा है और वो एहसास दिला रहा है कि हमें अपने बचपना के हरकतें, हम जिस तरीके से किशोर या युवा के दिनों में कुछ हरकतें हम करते थे, ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो पूरे संसार को खतरा है, संपूर्ण विनाश की ओर हम बढ़ते जाएंगे। तो आज सारे विश्व के नेताओं के सामने, चाहे वो धार्मिक नेता हो या पॉलिटिकल, राजनीतिक या विज्ञान के क्षेत्र में या और प्रशासनिक पद उन्होंने लिए हो, सबके सामने ये बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जिसको हम भुला नहीं सकते हैं। और वो क्या है, मेरी दृष्टि में पांच ऐसे मैक्रो लेवल चुनौतियां हैं जिसके बारे में भी हमें घोर विचार करने होंगे और इन समस्याओं के समाधान के हमारे पास उपाय है, क्योंकि वो उपाय आपको भौतिक जगत से नहीं मिल सकता है, वो आपको आध्यात्मिक बुनियादों पर ही इसके समाधान के उपाय निकालने होंगे। तो ये पांच जो बहुत बड़ी समस्या का रूप लेकर हमारे सामने विश्व के विकास, आध्यात्मिक विकास और जागरूकता में बाधा बने हुए हैं, वो कौन से हैं? पहले नंबर पर जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए समस्त मानव जाति को एकजुट होकर और खास करके 196 देशों के जितने भी नेता हैं, चाहे वो हेड्स ऑफ स्टेट हो या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने जो भी दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर किया है, जो भी वादे उन्होंने किए हैं, उसको पूरा करना होगा। अगर वो पीछे हटेंगे तो हमारी समस्या और बढ़ती जाएगी। सो द वेरी फर्स्ट मैक्रो लेवल प्रॉब्लम विच अगेन हैज टू बी कन्फ्रंटेड थ्रू द फोर्सेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज क्लाइमेट चेंज। द सेकेंड वन इज फाइनेंशियल अपहीवल्स, आर्थिक या वृत्त जो इकोनॉमिक दृष्टि से जो उथल पुथल होते रहा है, ये भी संसार के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, फाइनेंशियल अपहीवल्स। तीसरे नंबर पे है द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियार। एक समय था पूरा विश्व दो बड़ी बड़ी ताकतों में बटा हुआ था और एक शीतलहर का युद्ध चलते रहा, लेकिन वो समय समाप्त होने के बाद, सोवियत संघ का भंग होने के बाद, जिस तरीके से परमाणु हथियार भी समस्त मानव जाति को एक खतरे के लपेट में लाया है, वो भी दिन प्रतिदिन एक अनिश्चित, एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियारों का जो फैलाव हो रहा है, इस चुनौती का कैसे हम सामना करते हैं। चौथे नंबर पर है मानव अधिकार को लेकर हिंसा, शोषण और अन्याय, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स अट्रोसिटीज, चाहे वो बच्चों के अधिकार को हम छीन लें, कन्या भ्रूण हत्या के वजह से जिन बच्चियों का जन्म होना है उनको जन्म ही होने नहीं देते हैं, या जात के नाम पर हो, या नस्ल के नाम पर हो, या कोई वर्ग के नाम पे हो। सो देर आर ग्रॉस ह्यूमन राइट्स अट्रोसिटीज दैट आर लेफ्ट राइट एंड सेंटर हैपनिंग एवरी डे एंड वी नीड टू कन्फ्रंट। एंड द लास्ट एंड द फाइनल मेजर प्रॉब्लम इज द मिसमैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेस। इस संसार से हमें सब कुछ मिला है, इस धरती ने हमें सब कुछ दिया है, और धरती की विनम्रता देखिए, सब कुछ देने के बावजूद उनके छाती पे हम चलते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से आज भोगवाद की दुनिया ने लोभ, ग्रीड में जिस तरीके से हमने पृथ्वी का शोषण किया है, जो प्रकृति को हमने नष्ट किया है, इसका भी हमें असर, इसका भी हमें एहसास हो रहा है, और इसके भी दिन प्रतिदिन हमें जानकारी दी जा रही है। सो ऑन द वन हैंड द स्पिरिचुअल फोर्सेस आर ब्रिंगिंग अबाउट इंटीग्रेशन एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट ऑन द अदर हैंड देर आर दीज मेजर चैलेंजेस। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज ओनली अ टाइम फॉर मी टू गिव माई गुड विशेस। हालांकि मेरे को जो विषय दिया गया था कि एक नई विश्व व्यवस्था की ओर मानव जाति कैसे आगे बढ़ सकता है, वो विषय था, टूवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एंड दिस ईयर ऑल्सो हैपन्स टू बी द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बहाउल्लाह। बहाई धर्म के संस्थापक का द्वितीय शताब्दी वर्ष का उत्सव भी संपूर्ण बहाई समुदाय हर देश में, हर क्षेत्र में उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर माह में ये शुरू होगा और लगभग 6 महीने तक चलेगा। तो मैं समझता हूं कि मैक्रो लेवल ये जो संसार के सामने विश्व के सामने ये जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, इसके समाधान के लिए हमें कुछ नए संस्थाओं का निर्माण करना होगा, नए सोच के बारे में, नए विचारों के बारे में, हमारे दादियों की तरफ से, हमारे भ्राता बी के प्रजापिता विश्वविद्यालय की तरफ से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन साथ साथ इन विषयों को भी हमें लेना पड़ेगा। और बहाई समुदाय, संयुक्त राष्ट्र का जो एजेंडा 2030 है सतत विकास के लिए, जो 17 लक्ष्य है और 169 उद्देश्य है, उस पर भी पूरा सामर्थ्य जताते हैं। तो जब भी हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो इन विषयों पर को भी हमें ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूं कि समाज सेवा के क्षेत्र में ये सब विषय पर हम अपना योगदान देते रहे हैं, तो जब भी हम प्रार्थना, आराधना और ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमें ये बाहरी दुनिया की जो परिस्थितियां हैं और जो प्रासंगिक सरकार की तरफ से इसके समस्या के, इन समस्याओं का हल उनके पास कदापि नहीं मिल सकता है, उसके बारे में भी हमें सोचना है। और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, किशोर है, युवा है, उनके साथ मिलकर जब हम अपनी सेवा देंगे तब जाके मुझे लगता है कि आने वाले दिनों को हम अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, एक उज्जवल भविष्य की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि बड़ों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, जब तक वो खुद संकल्प नहीं लेते हैं, उनकी इच्छा शक्ति वो बहुत अपने आप अगर नहीं ठान लेंगे कि मुझे बदलना है, मुझे कुछ आदतें को छोड़ना है, तो वो बहुत कठिन होता है। लेकिन बच्चों के साथ जब हम नैतिक कक्षाओं के माध्यम से उनको बातें बताते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, किशोरों के साथ बैठकर सामूहिक रूप से उनसे भी हम पूछते हैं कि आज हिंसा का इतना वातावरण है, अश्लीलता इतना फैल रहा है, टेलीविजन के चैनल 1000 से भी ज्यादा है, सिनेमा, बॉलीवुड, कॉलीवुड, इस पर मेरा एक सौभाग्य था कि हमें, मुझे पहली बार पता चला कि आपके यहां गॉडली टीवी चैनल है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, भ्राता हरिलाल भाई बंशाली जी के साथ संपर्क करने का और कुछ समय के लिए ब्रह्म कुमारी भाइयों और बहनों की तरफ से जो सेवा है वो कैसे पृथ्वी पर बदलाव ला रहा है उस पर अपने विचार भी प्रकट करने का, बहाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से शुभकामनाएं भेंट करने का। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपका एक निजी टेलीविजन चैनल है और यहां से 13 भाषाओं में, बहुत सारे देशों में ये आध्यात्मिक संदेश करोड़ों की संख्या में लोगों को पहुंच रहा है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि मेरा समय खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है और मुझे पूर्ण विराम देना चाहिए। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी हजारों वर्ष पहले, आज हमें सभ्यता के नव निर्माण के लिए एक नए दृष्टिकोण से देखना है, और वो ये है कि संपूर्ण पृथ्वी एक देश है और समस्त मानव जाति इसके नागरिक है। हम सब एक ही पेड़ के फूल हैं और एक ही शाखा की पत्तियां। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं। ये वैलिडिक्ट्री सेशन में आपका डिक्लेरेशन भी ऐलान होगा, तो मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे संस्थाओं को ये अवसर मिला आपके 80 वां वर्षगांठ के उत्सव में भाग लेने का, अपना सामर्थ्य जताने का और संकल्प में अपना हस्ताक्षर देने का कि हम बदलाव ला सकते हैं और एक नए संसार का निर्माण कर सकते हैं। तो फिर से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय को कोटि कोटि बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर भ्राता मर्चन जी का, और बहुत गहराई से आप इस बात की ओर ले गए तो मुझे एक बात याद आई कि मंदिर MNDIR 6 words, मस्जिद 6 words, चर्च 6 words एंड गीता 5 words, कुरान 5 words, बाइबल 5 words, दे ऑल सेज द सेम 6 - 5 = 1, गॉड इज 1। इसी बात की गहराई में हमें जाना है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता BK गोलो, हेड ऑफ प्रोजेक्ट इंडिया 1 सोलार थर्मल पावर प्रोजेक्ट आबू रोड। वाकई में आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपके आने से खिल गया है आंगन, आपके सांस से झूम उठा है गगन। आप हो इसीलिए खुश है सारा चमन, और आपके मधुर वचन सुनने को उत्सुक है हर मन। भ्राता गोलो।
ओम शांति। डियर रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन द डाइस एंड डियर रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द ऑडियंस, आई एम वेरी प्लीज्ड टू बी हियर टुडे एंड टू अटेंड द 80 इयर्स एनिवर्सरी ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज। आई केम फर्स्ट टाइम टू माउंट आबू इन 1985 and our headquarter was very small in Mount Abu. It was a very small place, and the development and the achievement we have seen in the last 30 years are really a wonder. And I really like to congratulate the Brahma Kumaris for these achievements and for the progress it had done in the last 30 years. Myself, I have benefited to a great extent on the teachings of the Brahma Kumaris on yoga and meditation, and it helped me a lot to change my life, to change my attitudes, and to become a better person. So congratulations to the Brahma Kumaris for all these achievements. In the inaugural address, our Prime Minister Modi has mentioned the success of the renewable energy projects within the Brahma Kumaris, and my previous speaker has mentioned also about climate change, which is one of the biggest problems in the world, and we all in India, we can face it because it is garam garam, it is getting very hot. And the good news is that Brahma Kumaris is actively engaged in the last 10 years in the climate negotiations. We have an environmental initiative, and we are participating at all the UN climate conferences, and we're trying to build a bridge between consciousness, spirituality, our lifestyle, and climate change. In order to deal with climate change, we all have to change ourselves. I also like to share the good news that Brahma Kumaris is one of the largest institutional users of solar energy. We have started almost 25 years ago with the research and development of renewable energy projects, and the Brahma Kumaris and its daughter organization, the World Renewal Spiritual Trust, is a recognized solar research center with the government of India. And since then, we have done many research projects. We have installed solar steam cooking systems, and your food you're eating is partly cooked by sun, by solar energy. The electricity in this hall for this microphone is coming partly from solar energy. And some of you might have seen our India One solar project, which is just operational since 1 month. And some of the electricity which we are sending to the campus is also coming from this innovative new solar power project, which we are constructing under financial help from the German government
and from the Indian government, from the Ministry of New and Renewable Energy Sources in New Delhi. All these projects we are conducting in the field of science have a special aim. Our aim is to build a bridge between science on one side and spirituality on the other side. Science has done a lot of progress in the last 150 years, but now we can see also all the problems it has caused. We have air pollution, environmental pollution, and the future of our planet is in danger. It is the understanding of the Brahma Kumaris Institution to bridge the gap between science and spirituality. And we believe that spirituality can be the key to help all of us to change our inner world, to change our attitudes, our consciousness, our behavior, and thus bring ethics and values back into science. Because the world needs yogis. Because yoga is the key for transformation, and it is my firm understanding that spirituality and my inner strength of my thoughts shapes the outer world and the physical reality. If we imbibe spiritual qualities like love, compassion and happiness, we are all together able to change this world and make it a better world. You all know that Mahatma Gandhi once said, "Let us all bring jointly Ram Raj back to this planet." So you please all join hands in this task to bring Satyuga back to this world. And I'm very proud to be since 30 years associated with the Brahma Kumaris. I have benefited a lot. I wish this institution all the best for the future. And I'm very glad that you all have come here together to celebrate the 80 years. I hope you took some inspiration, you got some idea about meditation, and you will start practicing in the morning and in the evening for 5 minutes and become a change maker, a change to the positive. Thank you very much, and Om Shanti.
बहुत सुंदर कि विज्ञान और आध्यात्म का संगम हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है तो वाकई में जब हमने आईना साफ किया तो मैं नजर आया और जब मैं को साफ किया तो प्रभु आप नजर आए यही गोलू भाई के जीवन का अनुभव है कि उस गॉड से उनकी मुलाकात हो गई तो उनके अंदर इनर पावर जागृत हो गई अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता मिस्टर संतोष भारतीय जी को जो एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया के हैं आपके लिए यही कहती हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों में उड़ान होती है हौसलों में उड़ान होती है भ्राता संतोष भारतीय एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया
दादी के पास जाकर सर पे हाथ रखवाने की जिद मैंने की इसके पीछे कारण है वो मैं आपको बताता हूं मैं एक चीज साफ कर दूं मैं ब्रह्म कुमार नहीं हूं ब्रह्म कुमारियों के इस आंदोलन से मेरा मन के अलावा कृति में दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है मैं 26 तारीख को जब यहां आया संयोग से उस दिन मेरा जन्मदिन था तो अक्सर होता है दादी पत्नियों को बहुत कुछ चाहिए तो हमारी श्रीमती जी भी आई थी उन्होंने अदिति बहन से कहा कि जानकी दादी का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छा दादी शायद थक गई थी तो उन्होंने ईशु दादी से रात में 10 बजे का समय लिया अब मैंने कहा कि इतनी बुजुर्ग, मुझे अंदाज था कि शायद 80 साल की होंगी, हम उनके यहाँ गए 91 साल की, बिना झुर्रियों का चेहरा, और ऐसी मैंने जिद की जैसे दादी से की, वो मुस्कान और वो हंसी निश्चल जो बच्चे के मुंह पर ही होती है। दादी ने मेरे सर पर एक बार हाथ रखा, दो बार हाथ रखा, तीन बार हाथ रखा, और मुझे लगा कि कहीं कुछ मेरे शरीर में सहरन हुई है। 27 तारीख को रामदास भाई अठावले जी, गरीब का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। तो मैं 27 तारीख को माउंट आबू गया। बहुत छोटी घटना है लेकिन शायद ब्रह्मा बाबा का इशारा है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। वहां मैं पीस पार्क गया, पीस पार्क में देखा, बैठने की इच्छा हो गई, बैठ गया वहां पे। ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली, नजर उठा के देखा बाहर बालू पत्थर सूखा, ऐसे लगा जैसे कोई स्वर्ग का टुकड़ा, उसका छोटा सा टुकड़ा वहां पर लोगों ने बना के रख दिया हो। अब मेरे मन में सवाल हुआ कि ये इंसानों ने बनाया है या देवताओं ने, क्योंकि अगर इंसान बनाते तो आसपास भी बालू है पत्थर है, वहां भी ऐसा ही होता, तो इस जमाने में देवता तो आ नहीं सकते, इसलिए लगा कि ये मानवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लोगों ने बनाया है, इसलिए इसके पीछे कोई खास चीज जरूर होगी। वहां से उठ करके मैं पांडव भवन गया, बाबा के कमरे में गया, बाबा के कमरे में बैठा उनके पास, तो मैंने वहां पांडव भवन और पीस पार्क के बीच में चलते हुए मैंने अपने एक साथी से कहा, यार मुझे लगता है कि ये पूरा इलाका ये तो सचमुच स्वर्ग जैसा तो बन सकता है। अब मैं वहां बैठा जब बाबा के सामने आंख बंद करके, मेरे अंदर से कोई मुझे हिला रहा था, तुम जो सोच रहे हो उसको कहो। मेरे मन ने कहा मैं क्यों कहूं, मेरा क्या लेना देना इससे, पर मन एकदम जैसे उद्वेलित हो गया, कोई आदमी खड़ा होकर आपको हिला रहा हो। रात में वहां से मैं फिर ज्ञान सरोवर गया, ज्ञान सरोवर में मैंने अपने साथियों से कहा कि नहीं नीचे चलो, यहां पर शांतिवन में, क्योंकि 28 तारीख को यहां पर मुझे भी कुछ कहा गया था कि मैं स्टेज के ऊपर रहूं। मैं वहां बिना रात काटे हुए, इतनी अच्छी जगह, मैं नीचे आ गया। रात भर नहीं सो पाया, मन कह रहा था कुछ कहो, तो कहूं तो किससे कहूं, कोई था नहीं जिससे कुछ कहूं, तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं इस बात को जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा तब मैं कहूंगा। लेकिन 28 तारीख को मैं मंच पे था, सर के आशीर्वाद भी दिया यहां बड़ों ने, मृत्युंजय भाई भी यहां पर थे, निर्वैर भाई भी थे, सबने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला। अब मैं परेशान हुआ कि बोलने का मौका तो मिला नहीं, अब मैं इस बात को कहूं कैसे, पर मन के अंदर कोई कह रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कौन कह रहा है कि कुछ कहो कुछ कहो, जो सोच रहे हो उसको कहो। अब मैं इस बात अपने ये बात अपने साथियों से भी नहीं कह सकता था, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुमको खामोखा की एक चीज मन में आ रही है, कहो कहो कहो। अदिति जी से मैंने कहा कि ये बड़ा बुरा हुआ, मुझे बुरा लगा कि मंच पर मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, टाइम ही नहीं था। उन्होंने आज जो टेलीविजन चलता है उस टेलीविजन में मेरा प्रोग्राम करवा दिया। एंकर ने जब पूछा, मैंने अपने मन की बात उनसे कही कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है, वहां से मेरे मन में जिद हुई कि मैं घुसूं इस कार्यक्रम के भीतर, और वहां से मृत्युंजय भाई बैठे हुए हैं, मैं इनके पास आ गया मैंने जिद की, ये मेरे मन में लग रहा है, और मुझे लगा ये बिल्कुल मना कर देंगे कि आपका कोई लेना देना इससे नहीं है, आप चुपचाप आए हैं वैलिडिटी सेशन में भाग लीजिए और शाम को आप अपने घर जाइए। पर मैंने इनके सामने प्रस्ताव रखा और मैंने जिद की कि ये प्रस्ताव मैं ही रखूंगा वैलिडिटी सेशन में। मैंने इनको प्रस्ताव बताया, ये उसको मान गए, और न केवल मान गए बल्कि वो इस प्रस्ताव को कैसे पूरा हो इसके बारे में मुझसे आगे सोचने लगे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब इसके पीछे मुझे लगता है कि बाबा का इशारा है और ब्रह्मा बाबा ने मुझे इसका माध्यम बनाया है कि मैं ये बात आपके सामने रखूं। नहीं तो मैं संतोष भारतीय, एक अखबार का मैं काम करने वाला एक पत्रकार, ब्रह्म कुमारियों की इतनी बड़ी सभा में 80वें जन्मदिन की, जहां पर देश भर से 10,000 से ज्यादा लोग आए हों, उनके बीच में जिद करूं, मुझे ये जानते नहीं, एक दो बार मुलाकात हुई और मुझे प्रस्ताव रखने की अनुमति दे दें, तो मुझे लगा बाबा का इशारा है, मुझे कहना चाहिए। मैंने एक प्रस्ताव तैयार किया है, और पर मृत्युंजय भाई ने मुझे कहा है कि जब किरण जी यहां पर आ जाएं, किरण बेदी जी, तब मैं इस प्रस्ताव को रखूं। मैं प्रस्ताव तो ठीक है, मृत्युंजय भाई फिर रख दूं प्रस्ताव, प्रस्ताव बाद में रखें, मैडम के सामने रखें तो ठीक है, जैसा कहें वो। तो मैं मैडम के सामने ये प्रस्ताव रखूंगा, लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। अठावले जी, ये प्रस्ताव जब मैं रखूंगा, मैंने शुरू में साफ किया कि मैं ब्रह्म कुमार नहीं हूं। इस प्रस्ताव को रखने के पीछे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चलाने वालों का कोई हाथ नहीं है, उनकी कोई प्रेरणा नहीं है। मैं किसी की तरफ से ये प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं, मैं ये प्रस्ताव अपनी तरफ से रख रहा हूं, और मुझे ये लगता है कि ब्रह्मा बाबा ने मुझे कहा है कि मैं ये प्रस्ताव आपके सामने रखूं। अगर आपको लगता है कि इस प्रस्ताव में कोई दम नहीं है, एक पत्रकार का पागलपन समझ करके मेरी बात को भूल जाइएगा, और अगर आपको लगता है कि इस प्रस्ताव में दम है, तो जब किरण जी यहां पर आ जाएं, रामदास जी हमारे इतने संघर्षशील आदमी हमारे बीच में बैठे हैं और इतने कमाल के आदमी हैं कि ऐसे लड़ने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं नहीं, और वो भी वंचितों के लिए, इनकी उपस्थिति में जब भी मैं ये प्रस्ताव रखूं, तो याद रखिएगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो खड़े होकर ताली बजाकर ब्रह्मा बाबा के सम्मान में, इसके समर्थन में अपना मत दीजिएगा, और अगर न अच्छा लगे, बिना कुछ कहे हुए मुझे भूल जाइएगा कि मैंने क्या कहा। तो मैं आपसे इजाजत लेता हूं इस आशा से कि मुझे दोबारा इस प्रस्ताव को रखने के लिए आपके बीच में आने का मौका मिलेगा। ओम शांति।
बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में अभी चीफ गेस्ट ऑनरेबल रामदास बंधु आठवले जी उपस्थित हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। मैं बहनों से अनुरोध करती हूं कि बैचेस व गुलदस्ते के द्वारा आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, दिल की भावनाओं के साथ तालियां बजनी चाहिए उस प्रभु के लिए भी जिन्होंने ऐसी रचना रची है। जिस प्रभात से प्रभु का सिमरण हो जाए, वो प्रभात सुप्रभात हो जाती है, और जिस शाम में प्रभु का स्मरण हो जाए, वो शाम शुभ शाम हो जाती है, शुभ शाम हो जाती है। अभिनंदन, स्वागत। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ बहुत ही सुंदर अनुभूति कराने के लिए राजयोगिनी बीके पूनम दीदी जी को, सब जोन हेड ब्रह्मा कुमारी जयपुर। वाकई में दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है, ईश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, पर भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। इसी मेडिटेशन की एक्सपीरियंस की अनुभूति की ओर हमें ले चल रही हैं आदरणीय पूनम दीदी जी।
ओम शांति। सम्मान्य मंच, सभा में उपस्थित बहनों भाइयों, हम तीन दिन से मेडिटेशन राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए। मन की पवित्रता और मन की शक्ति का हमें विकास करना है तो मन के अंधकार से मुक्त होना होगा, और इसकी विधि है ज्ञान और गुणों के प्रकाश को भीतर लाना। जो हम रोज अभ्यास करते हैं और उससे अनुभूति भी करते हैं, वास्तव में इस मेडिटेशन राजयोग के जो लाभ हैं, मन की चंचलता अस्थिरता समाप्त हो, उसके लिए आज हम करेंगे प्रयास आत्मचिंतन का। क्रोध को कम करना है तो मन की शांति को विकसित करना होगा, तो हम शांति का चिंतन भी आज करेंगे। और तीसरा लाभ, भय चिंता असुरक्षा की भावना को समाप्त करना है तो सर्वशक्तिमान परमात्मा से मन की तार जोड़ेंगे और अपनी आंतरिक शक्ति को, अंदर के विश्वास को जागृत करेंगे। इन तीन बिंदुओं पर अभी मैं आपको कुछ विचार दूंगी, आप सब एकाग्रचित होकर सुनेंगे। कृपया सीधा बैठें, कमर सीधी रखें और ध्यानपूर्वक श्रेष्ठ चिंतन में मगन हो जाएं और बाह्य जगत से नाता तोड़कर अंतर जगत की ओर आए। अंदर में मैं प्रकाश पुंज आत्मा ज्योति स्वरूप अविनाशी शक्ति हूं। पांच तत्वों के बने शरीर से न्यारी ऊर्जावान ज्योति पुंज, ये देह मुझ आत्मा का वस्त्र है जो मैंने कार्य करने के लिए लिया है। मैं इससे अलग, मेरा मन और बुद्धि पर शासन है, मैं आत्मा राजा इंद्रियों की मालिक अधिकारी हूं। तो मेरे अंदर संयम अनुशासन विकसित होता है, मैं आत्मा इंद्रियों द्वारा कार्य लेने वाली अविनाशी चैतन्य शक्ति, मेरा आदि स्वरूप शुद्ध है, पवित्र है। पवित्र विचारों में मन की शांति है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मेरा दिव्य स्वभाव है। शांति मेरी शक्ति है। शांति मुझ आत्मा का खजाना है। शांति मेरी संपत्ति है। मुझे दिमाग ठंडा, मन शांत, वाणी शीतल मधुर बनानी है। और शांति के विचारों से, शांति के कार्य करने हैं। मन की चंचलता, कर्म इंद्रियों की चंचलता शांति की शक्ति से काबू हो जाती है। मैं शांति की मूर्ति, शांति सागर परमपिता परमात्मा की संतान, ब्रह्मांड से, शांति धाम से शांति की किरणें नीचे आ रही है और मुझ आत्मा में समाती जा रही है। परमात्म प्रकाश, परमात्म शक्ति से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूं। उनकी पावन किरणें ये मेरी छत्र छाया बन गई हैं और बाबा की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूं, निश्चिंत हूं, अपनी सारी जिम्मेवारी, सारी चिंताएं, बोझ मैंने बाबा को दे दिए। परमात्म पालना, ज्ञान योग की पालना में पलने वाली, उड़ने वाली, उमंग उत्साह से भरपूर मैं उड़ता पंछी। मुझे बाबा ने अपने नैनों में समाया है। उनकी प्यार भरी दृष्टि मुझ पर पड़ गई है। अब मेरा भाग्य उज्जवल है। भाग्य विधाता का हाथ मेरे सिर पर है। तो मैं आत्मा खुश हूं, बेफिक्र बादशाह। मुझे परमात्म ज्ञान और जो राजयुग की शिक्षा मिली है उससे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, सद्गुणों का विकास करना है और स्व परिवर्तन से विश्व में परिवर्तन लाना है। अनेक आत्माओं को भी ये संदेश देना है। अब यही मेरा कर्तव्य है। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत ही सुंदर अनुभूति अभी हमने की। वाकई में पूरी सभा पवित्रता की खुशबू से सराबोर हो गई। मैं भी आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय संतोष दीदी जी को। संतोष दीदी जी हमें संतोष के उमंग उत्साह से भरपूर करेंगी। आदरणीय संतोष दीदी जी, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी महाराष्ट्र जोन, तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय दीदी संतोष जी को, क्योंकि बाबा के साथ का अनुभव आपने बहुत ही गहराई से दिव्यता के साथ किया है, तो हमारे भ्राता आठोले जी भी उनके अनुभव को सुनकर उस अनुभूति की गहराई में उतरेंगे।
ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय मंच और उपस्थित भाई बहनों, अभी तक हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर विचार सुने। अभी हम हमारे संतोष भाई के द्वारा ये भी सुन रहे थे कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, ये बोलते बोलते उन्होंने तीन बारी तो ब्रह्मा बाबा बोल दिया। अभी आप ही बताइए, जब ये ब्रह्मा उनका बाबा है तो वो जरूर ब्रह्मा कुमार हो गए। तो जिस प्रकार निराकार परमात्मा शिव ये सर्व आत्माओं का पिता है, उसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा भी सर्व जीवात्माओं का पिता, इसीलिए उसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, एडम कहा जाता है, आदि देव कहा जाता है। हम लोग शास्त्रों में भी सुनते हैं कि ब्रह्मा को संकल्प उठा और उसने सृष्टि रची, तो ये हमने अपने आंखों से देखा, अपने जीवन में अनुभव किया कि एक ब्रह्मा बाबा ने जब परमात्मा शिव ने उनको संकल्प दिया नई सृष्टि रचने का, स्वर्ग बनाने का, जब उनको शुरू में साक्षात्कार कराया कि नई दुनिया जो स्वर्ग है, श्री कृष्णपुरी है, जो राम राज्य है, वो तुम्हें ही रचना है, तुम्हें ही बनाना, ये संकल्प आते ही उन्होंने अपना तन मन और धन सब ईश्वरीय कार्य में लगा दिया। और ईश्वरीय कार्य में लगा करके अपने साथ इतने लाखों के अंदाज में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को भी तैयार कर लिया, जो सृष्टि के परिवर्तन में सहयोगी बन गए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये उद्देश्य है कि ये जो पुरानी दुनिया है इसको नया बनाने के लिए हमें सर्व को योगदान जरूर देना है, क्योंकि यहाँ का स्लोगन ही ये है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर हमें विश्व परिवर्तन करना है तो पहले खुद का परिवर्तन जरूर करना है। जब तक हम खुद का परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक हम विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये ब्रह्मा बाबा ने हम सबको प्रैक्टिकल में करके बताया कि किस रीति से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता। परंतु स्व का परिवर्तन जो है उसका आधार है विचार और अपना दृष्टिकोण। अगर हमारे विचार बदली हो जाते हैं, हमारे अंदर अगर श्रेष्ठ विचार पैदा होते हैं, पॉजिटिव विचार पैदा होते हैं, तो हम जैसा सोचते हैं उस रीति से बन सकते हैं। और इन विचारों को परिवर्तन करने से ही हमारे संस्कार परिवर्तित होते हैं, संस्कार परिवर्तन होने से सारा संसार परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए संसार को परिवर्तन करने के लिए विचारों को परिवर्तन करना है, और उन विचारों को परिवर्तन करने के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय ज्ञान सिखाया जाता है।
अभी हमारे बीच में हमारी अति स्नेही बहन ऑनरेबल उपराज्यपाल किरण बेदी जी उपस्थित हो चुकी है। सभा में सभी खड़े हो जाएंगे। अभी उनके सम्मान में और हमारे देश के सम्मान में नेशनल एंथम होगा। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी जो किनारे खड़े हैं वो थोड़ा बीच में आ जाएं तो अति उत्तम रहेगा। नेशनल एंथम के लिए सभी तैयार हो जाएं। नेशनल कर रही हूँ भ्राता मृत्युंजय भाई जी को स्वागत के लिए ऑनरेबल उपराज्यपाल किरण बेदी जी की एवं साथ ही हमारे अतिथि रामदास बंधु आठवले जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास में व 80 साल की वार्षिक उत्सव की समारोह में एक ताज की मणि एक डायमंड हॉल में उपस्थित है। ऐसी डायमंड आदरणीय दीदी किरण बेदी जी को हम सभी जोर से ताली बजा करके स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे, सम्मान करेंगे। एक ऐसी महिला शक्ति है, ऐसी शिक्षक है, ऐसे डिसिप्लिन सोसाइटी का एक आदर्श नारी है और इस भारत की गौरव स्त्री रत्न है, सर्वप्रथम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ज्वाइन आईपीएस, हम सबके लिए गौरव की बात है। दूसरा जो है फर्स्ट पोलिस ऑपरेटर टू स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी एंड योगा इन जेल, विशेष करके तिहाड़ जेल में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शाखाओं को बुला करके उन्होंने वहां शिक्षा देने के लिए शुभारंभ किया और रेसिपिएंट ऑफ द मेगासे अवार्ड, हम सबकी भारत के लिए गौरव है। महिला शिरोमणि अवार्ड 1995 में प्राप्त करके हमारे भारत की गौरव को इन्होंने ऊंचा बनाया। प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 1999 में प्राप्त करके इस भारत का एक उच्च स्तर के लिए अभिमान बनाया। मदर टेरेसा मेमोरियल नेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, अभी हमारे सोशल जस्टिस के मंत्री महोदय जी भी है, इन्होंने पहले इस अवार्ड प्राप्त करके देश की एक नया ऊर्जा प्रदान किया, एक शक्ति प्रदान किया ऐसी महिला को, ऐसी महामहिम को, ऐसी आदरणीय बहन को। हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के विश्व परिवार की तरफ से, समस्त इधर आए हुए भाई बहनों की तरफ से, आदरणीय दादी जानकी जी की तरफ से, हृदय मोहिनी जी की तरफ से, आप सबकी तरफ से मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और ऐसी यादगार समारोह है, 80 साल का वार्षिक उत्सव है, इस उत्सव में और एक मुख्य अतिथि ऑनरेबल श्री रामदास बंधु अटवाले जी है, भारत सरकार की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मंत्री जी है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत स्नेही है, बहुत सहयोगी है, जब भी हमारा बहन है इसको किसी भी कार्यक्रम में बुलाते हैं तुरंत हाँ जी के पाठ बजाने वाले, हाँ जी ऐसा भाता जी हमारा सब उपस्थित है, ऐसे भाई जी को हम लोग प्राप्त करके बहुत 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 खुशी महसूस कर रहे हैं। और भले उनकी महाराष्ट्र से है परंतु इसका स्नेह सारी भारतवासियों से, सारे विश्व के प्रति, आत्मा के प्रति है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ कंधे पर कंधे लगा करके भारत को सोशल जस्टिस दिलाने में, वुमेन एम्पावरमेंट में और भारत को नया न्यू इंडिया बनाने के कार्य में लगे हुए ऐसे भाई जी को ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अनेक समस्त भाई बहनों ने इधर और भी महारथी भाई लोग इधर उपस्थित है, उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अधिक समय ना लेते हुए आप सबको मैं बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति, नमस्ते।
अभी हमारी संतोष दीदी जी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि अभी हम उनके आशीर्वचनों से भरपूर नहीं हुए हैं, तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय संतोष दीदी जी को।
ओम शांति। आदरणीय बहन किरण बेदी जी, क्योंकि वो भी शिव शक्ति है और इस शिव शक्ति के परिसर में आपका आगमन हुआ, इसीलिए और भी इस प्रोग्राम को चार चांद लग गए। हम ये सुन रहे थे कि विचारों के परिवर्तन से सारे संसार को हम परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि एक ब्रह्मा बाबा के संकल्प में इतना बड़ा परिवर्तन लाया समाज के अंदर। तो यहाँ पर जो भी बैठे हैं, अगर सब ये दिल से अपने साथ एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमें परिवर्तित होकर के सारे विश्व को, खास भारत और सारा विश्व, इनको परिवर्तन करने के लिए अपना योगदान देना, तो अगर सारे दिनचर्या में से थोड़ा सा समय अगर हम इस कार्य में लगाते हैं तो उससे हमारा भी फायदा होता है और समाज का भी फायदा होता है। क्योंकि सिर्फ हम खुद के लिए जीते हैं तो ये जीना नहीं है, परंतु औरों के लिए जीना वास्तव में यही जीना है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही सिखाता है कि ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने विचारों को परिवर्तन कीजिए, राजयोग के द्वारा अपने अंदर ऐसी शक्ति धारण कीजिए जिस शक्ति के आधार पर हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकें। बहुत व्यक्ति ऐसे समझते हैं कि ये जो आध्यात्मिकता का विषय है ये फुर्सत के समय का है, परंतु ये ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान और जो योग है इसको हरेक, इस चीज की हरेक व्यक्ति को आज आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि समय ये परिवर्तनशील है, समय ये बदलता रहता है। कहा जाता है सब दिन होता ना एक समान, जिस समय पर हमारे फेवर में समय चलता है तो हम बड़े खुश रहते हैं, परंतु जब कोई भी बात हमारे मन पसंद नहीं होती है तो हम अपसेट हो जाते हैं। सदैव हमारी स्थिति ऊंची रहे, हमारे द्वारा शांति के और शक्ति के वाइब्रेशन फैलते रहे, इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ही जीवन में आवश्यकता है कि परिस्थिति भले बदले परंतु हमारी स्वस्थिति कभी न बदले। जब इन छोटी छोटी बातों को हम समझ लेते हैं, समझने के बाद उसको जीवन में धारण कर लेते हैं, तो इससे समाज को भी फायदा होता है, हमें खुद को भी फायदा होता है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 80 बरस से ये अविरत कार्य कर रहा है, जो मनुष्यों के जीवन में दिव्यता ला करके, दिव्य गुणों की धारणा करा करके उसके जीवन को पवित्र और योगी बना रहा। तो हमें आज बड़ा हर्ष है कि ये जो 80 बरस का हम महोत्सव सब मिलकर के मना रहे हैं, इसमें हम सब ये खास विशेष स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे इस स्लोगन को जीवन में लाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और अनेकों को भी बढ़ाएंगे। और जो शिव पिता की इच्छा है, प्रेरणा है, उनका जो डायरेक्शन है कि इस दुनिया को बदलना है और पुरानी दुनिया से नई दुनिया लानी है, स्वर्णिम युग लाना है, वो हम जरूर पूरा करेंगे। आज के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय संतोष दीदी जी का। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय भ्राता रामदास बंधु आठोले जी को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। आपके लिए, आपके सामने अभी हमारे संतोष भाई बहुत ही सुंदर, हम क्या प्रेरणाएं यहाँ से लेके जा रहे हैं उसको प्रस्तुत करेंगे।
दादी, आपने कहा कि 3 बार मैंने ब्रह्मा बाबा का नाम लिया और ये भी कहा कि मैं ब्रह्म कुमार नहीं हूँ, सर्टिफाइड ब्रह्म कुमार नहीं हूँ, बिना सर्टिफिकेट का ब्रह्म कुमार हूँ। और मृत्युंजय भाई, एक चीज आपको बता दूं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पद से नहीं जाने जाते, जो अपने संघर्ष, जीवट, अदम्य साहस से जाने जाते हैं। जब कोई पद नहीं था तब किरण बेदी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक नाम सबकी जुबान पे होता था। और संघर्ष का अगर दूसरा नाम कोई है वंचितों के लिए संघर्ष का, तो आपके पड़ोस में बैठे हैं रामदास अठावले जी, आप दोनों को मेरा प्रणाम। मैंने निवेर भाई और बीएम भाई, बिजमोहन भाई, आपके आने से पहले मैं कई अपना अनुभव बता चुका हूं। मैं एक प्रस्ताव पढ़ रहा हूं जो मेरे मन में कहां से आया मैं नहीं कह सकता, शायद कोई ताकत है अब मैं ये कह सकता हूं कि शायद ये बाबा की प्रेरणा हो सकती है, पर मैं बहुत निश्चित नहीं हूं क्योंकि ऐसी चीजों में मेरा भरोसा थोड़ा कम होता है। पर कुछ चीज है जो मुझे लगातार ठेल रही है और मैं जिद करके मृत्युंजय भाई से यहां पर आया हूं प्रस्ताव रखने। प्रस्ताव, मैं संतोष भारतीय संपादक चौथी दुनिया ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत और संपूर्ण विश्व से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 80वें वार्षिकोत्सव में आए 10,000 से अधिक प्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री से ये विनम्र आग्रह करते हैं कि वो माउंट आबू शहर को देश और दुनिया का पहला आध्यात्मिक शहर घोषित करें। और ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा अनुसार इसे प्राकृतिक और नैसर्गिक तौर पर विकसित किया जाए, यहां ऐसा वातावरण बने ताकि लोग आध्यात्मिक तौर पर स्वयं का विकास कर देश में नई ऊर्जा के निर्माण में सहयोग दे सकें। यह काम हम आध्यात्मिक शक्तियों के सहयोग से करेंगे। ये सम्मेलन का प्रस्ताव, हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो इस शहर को जीव हिंसा और शराब से मुक्त क्षेत्र बनाकर वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटक शहर के रूप में विकसित करने की अनुमति दें। हम इस महान कार्य को जनता और शासन के सहयोग से करेंगे। इसे आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के विकास के लिए सभी आधारभूत ढांचा तैयार करने की स्वीकृति दें। इसे भी हम आपके दिशा निर्देश में करेंगे। विश्व प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर को दुनिया के आध्यात्मिक नक्शे पर महत्व देते हुए सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का हम वचन देते हैं। माउंट आबू को आध्यात्मिक शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने का हम वचन देते हैं। महिलाओं और नौजवानों को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में हम पूरी ताकत लगा देंगे, जिससे ये शहर पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन सके। यह सारे और इससे जुड़े कार्य प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने स्वयं तथा सहयोगियों के साथ करना चाहता है। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी इस अभूतपूर्व प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति व सहमति देकर इसे सफल बनाने में योगदान देंगे। अभी तक ये संतोष भारती की तरफ से प्रस्ताव है, अगर आप इसे पास करेंगे तो ये आपका प्रस्ताव हो जाएगा। खड़े होकर लोग समर्थन कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि पहले मृत्युंजय भाई इसके ऊपर दो इसको सेकंड कर दें ताकि ऑफिशियल हो जाए ईश्वरी विश्वविद्यालय का, और फिर रामदास भाई अठावले जी कुछ कहना चाहेंगे, वो इसके ऊपर क्या कहेंगे ये तो वो जाने, पर उनसे हम समर्थन की उम्मीद अवश्य करते हैं।
जो आदरणीय भ्राता संतोष भाई के माध्यम द्वारा ये प्रस्ताव हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ यदि इस प्रस्ताव को हम सभी 125 करोड़ भाई बहनों को दिल में विराजमान करने वाले और सारे विश्व की दिलों में चक्रवर्ती के रूप में विराजमान करने वाले हमारे भारत की प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तथा भारत सरकार के सभी मंत्रीवर्ग और भारत की जनता के सहयोग से हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपको आश्वासन दिलाते हैं माउंट आबू को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी बनाएंगे। अभी बहुत आईटी सिटी स्मार्ट सिटी आदि आदि बन रहे हैं, परंतु भारत में स्पिरिचुअल सिटी अभी तक एक भी नहीं है। रिलीजियस सिटी बहुत है,
परंतु स्पिरिचुअल सिटी ऐसा बनाएं ताकि सारी दुनिया को ऊर्जा मिले, सोल एनर्जी मिले। सोलार एनर्जी के बारे में बात करते हैं परंतु सोल एनर्जी के बारे में हम लोग भूल गए हैं, परंतु सोल एनर्जी को प्रदान करने वाला स्वयं परम शिक्षक इस धरा पर अवतरित है और साथ साथ में इस ईश्वरीय विषय इसी शिक्षा को लेकर के विश्व के कोने कोने में यूनिवर्सल ब्रदरहुड को फैला रहे हैं, परंतु इसको और भी विशाल रूप देने के लिए हम भारत सरकार से भी अनुरोध करते हैं, राज्य सरकार से भी अनुरोध करते हैं। हम भारत को फिर भी वर्ल्ड लाइट हाउस एंड माइट हाउस बनाने के कार्य में हम सफल होंगे, परंतु इस कार्य में हम कंधे से कंधे लगाकर सेवा के लिए हम सदा संलग्न है, ये विश्वास के साथ साथ आश्वासन मैं देता हूँ। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ इस प्रस्ताव के साथ साथ अपने वक्तव्य भी देवे।
यहाँ सम्माननीय महामहिम पांडेचेरी की गवर्नर और आपकी सबकी लाडली नेता श्रीमती किरण बेदी जी मंच पर मौजूद है। यहाँ जो अभी राजयोगी बीके मृत्युंजया उसके साथ साथ बीके ब्रिज मोहन एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, हमारे एडिटर इन चीफ, छोटी दुनिया के हमारे मित्र मिस्टर संतोष भारतीय, राजयोगी बीके संतोष बहन, एक ही मर्चेंट मैनेजिंग ट्रस्टी बीके निर्वायर और सभी भारत के कोने कोने से और पूरी दुनिया से जहां 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर्स हैं और 80 साल पूरे हो रहे हैं, मतलब 1937 में जब अपना भारत देश आजाद नहीं था, जब पाकिस्तान बांग्लादेश जब भारत में ही था, तब 1937 में ये संस्था की स्थापना हुई और यहां ये जो सेंटर बना ये 1950 में बना और जो माउंट अबू है ये पहाड़ी इलाका है, ये कॉन्फ्रेंस का जो इनॉग्रेशन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर किया और इस संस्था को हार्दिक बधाई दी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी मेडिटेशन करते हैं, मन शांत रखते हैं, मन को शांति मिलनी चाहिए और जो आदमी अपने मन को शांति नहीं दे सकता है वो दूसरों को क्या शांति देगा, तो मन की शांति जो है ये मन को शांत रखने का काम करना चाहिए, मन में जो गुस्सा है अहंकार है उसको खत्म करना चाहिए मेडिटेशन के माध्यम से। बहुत सालों से ये काम चल रहा है और हमें गर्व है कि आप जैसे सैक्रिफाइस करने वाले लोग राजयोगी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा मेंबर आपके हैं, कम से कम 8,000 सेंटर अपने भारत में है, जहां जहां भी जाते जब वहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का सेंटर दिखाई देता है, वहां मेडिटेशन का प्रोग्राम होते रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम वहां दिया जाता है, पर्यावरण के संबंध में उनके साथ बातचीत की जाती है, पेड़ लगाने के बारे में लोगों को बताया जाता है, और महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, ये सशक्तिकरण होना चाहिए और ये बहुत ही बड़ा काम आपका इस संस्था कर रहे हैं, हमें बहुत बड़ा गर्व है। तो महिलाओं के लिए तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी पर अगर आपकी रहेगी भक्ति, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी पर अगर आपकी रहेगी भक्ति तो जरूर मिल जाएगी आपको मुक्ति। जब मजबूत हो जाएगी देश में नारी शक्ति, जब मजबूत हो जाएगी देश में नारी शक्ति तो आप पर कोई भी नहीं करेगी शक्ति, तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हमारी महामहिम किरण बेदी जी है, एक महिला है लेकिन लड़ने वाली महिला है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला है और हमें बहुत बड़ा गर्व है कि ये संस्था में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मुझे मालूम है कि अपने भारत देश के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए एक हिंदू कोड भी लाया था पार्लियामेंट में, लेकिन भारत के पार्लियामेंट ने उसको मंजूरी नहीं दी, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लॉ मंत्री पद का इस्तीफा दिया था, रिजाइन दिया था। तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए, अगर मां शिक्षित हो जाएगी तो पूरा देश शिक्षित हो जाएगा, तो मां को शिक्षित करने की भूमिका आप लोग रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आज यहां हमारे संतोष जी ने, जो पत्रकार भी है, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी है, उन्होंने माउंट आबू को आध्यात्मिक सिटी अनाउंस करने के बारे में बताया है। नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी अनाउंस की है, पूरे भारत में जो जो सिटीज है उसको स्मार्ट करने का काम हम कर रहे हैं, तो माउंट आबू को और हम वहां स्मार्ट बनाएंगे। हमारी सरकार स्मार्ट काम कर रही है और यहां ये जो आध्यात्मिक सिटी माउंट आबू को आध्यात्मिक सिटी की सूचना आपने की है, मांग की है, मैं भी इसका सपोर्ट करता हूं और मैं नरेंद्र मोदी साहब से बात करूंगा। और आध्यात्मिक सिटी एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा सेंटर आपका है, ये पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं। और ये माउंट आबू जो है, ये माउंट आबू हमेशा पूरे दुनिया के याद में रहने वाला माउंट आबू है, जो भी दुनिया से लोग यहां आते हैं वो ये पहाड़ देखकर जाते हैं, और इसीलिए माउंट आबू सिटी को आध्यात्मिक सिटी करने की जो आपकी मांग है ये बहुत अच्छी मांग है। जरूर हमारी जो भारत सरकार है, मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, ओल्ड एज आते हैं, डिसेबल लोग आते हैं, ओबीसी लोग आते हैं, और जो लोगों को मदद की आवश्यकता है उनको मदद करने का मेरा मंत्रालय है, आपको भी मदद करने के लिए मैं आया हूं। आपके ये जो बहुत बड़ा काम चल रहा है उसका पूरा सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि शांति के बगैर विकास नहीं, शांति नहीं रहेगी तो जहां जहां क्रांति, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, हर बार भारत पर भी इसी तरह के छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है, तो मानव को मानव बनाने का काम अगर आप कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा काम है आपका, बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी संस्था, और आपकी संस्था का मुझे बहुत बड़ा गर्व है। आदमी को आदमी बनाना ये बहुत सिंपल काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, उसके दिल की, उसके मन की जो अस्वच्छता है उसको निकालना बहुत बड़ा बड़ा काम है। हमारी इलेक्शन जितना इतना मुश्किल नहीं है, हम तो जीत जाते हैं, कोई हार भी जाते हैं, लेकिन मानव के मन का जो मैला होता है, वो अस्वच्छता होती है, उसको अहंकार होता है, उसको बाहर निकालना ये बहुत बड़ा काम है। और ये काम आप कर रहे हैं, आप लोग ये काम कर रहे हैं, हम नहीं काम कर सकते, लेकिन हम भी करेंगे। आप ऐसा काम कर रहे हो देखकर हम भी करेंगे, हम भी मतलब मेडिटेशन के माध्यम से मन को शांति देने का हम काम करेंगे। खाली शांति देने का काम हम नहीं करेंगे, मन को शांति देते देते पूरे भारत में शांति फैलाने का काम हम लोग करेंगे। और उसके लिए जरूर हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार या कि राजस्थान की हमारी मैडम जी की सरकार, वसुंधरा राजे की सरकार, जरूर हम कोशिश करेंगे। तो जो आज आप सब लोग पूरे दुनिया के यहां है, लगातार 26 तारीख से प्रोग्राम यहां चल रहा है, अलग अलग मेहमान आ रहे हैं, मेडिटेशन पर, शांति पर, मानव को मानव बनाने के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में यहां चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये 80वें आपके वर्धापन दिन के अवसर पर मैं आप सभी को यहां हार्दिक बधाई दे देता हूं। और जरूर आपकी जो भी समस्या है, ये समस्या हल करने के लिए जरूर सरकार की तरफ से आध्यात्मिक सिटी तो ही है, ये तो आपकी मांग ही है, लेकिन और भी सिटी को जो भी कुछ मदद कर सके वो मदद भारत सरकार के द्वारा करने के लिए जरूर मैं कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज जो अपना 18th एनिवर्सरी ऑफ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम कल्चरल फेस्टिवल है, इसको मैं हार्दिक बधाई देता हूं भारत सरकार की तरफ से, मेरे मंत्रालय की तरफ से, और जिस पार्टी से मैं आया हूं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उस पार्टी की ओर से, बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अनुयायी देश भर में है, दुनिया भर में, उनके तरफ से भी मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय राजस्थान।
बहुत ही उमंग उत्साह से भरपूर कर देने वाले आपके शब्द कि नारी जिस दिन जाग जाएगी, खोई शक्ति पा जाएगी, सचमुच इस प्यारी धरती की उस दिन किस्मत जाग जाएगी। तो बहुत ही अच्छे विचार रामदास बंधु जी ने हमारे सामने उपस्थित किए। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री रजनी राजा कलाश्रेष्ठम विजयनगरम नृत्य की प्रस्तुति के लिए। और इसके पहले आपको चेत्री चंद की भी लख लख करोड़ करोड़ बधाइयां दे रही हूँ, और साथ ही गुड़ी पाड़वा की भी, क्योंकि हिंदू भारतीय नववर्ष 2074 विक्रम संवत की शुरुआत हो रही है, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म नई दुनिया की स्थापना जल्दी ही होने वाली है। पुनः चेत्री चंद जी लख लख करोड़ करोड़ बधाइयों। सुंदर प्रस्तुति। अब जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। परमात्मा की किरण और हमारे देश की किरण बहन और हम सब की अति स्नेही जिन्होंने देश की वेदी पर अपने आप को खड़ा कर दिया। आपसे मुलाकात 2001 में हुई थी जब बैंगलोर से दिल्ली रैली में गए थे। मैंने आपके साथ फोटो खिंचवाया था लेकिन कैमरा खराब हो गया था। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके साथ मैं उस मंच पर हूँ और आपका परिचय दे रही हूँ। बचपन से जब आपको देखती थी आपके समान बनने की इच्छा होती थी लेकिन अध्यात्म की वेदी पर अपने को समर्पण किया इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। तो मैं आदरणीय किरण बहन के लिए यही कहना चाहती हूँ कि चेहरे पर अशकों की लकीर बन गई, जो न चाहा था वही तस्वीर बन गई। हमने तो रेत पर चलाई थी उंगलियां, देखा तो आपकी तस्वीर बन गई, देखा तो आपकी तस्वीर बन गई। आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल श्रीमती किरण बेदी जी को, उपराज्यपाल पांडेचेरी।
ओम शांति। मेरे परम आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं बहुत बहुत आभारी हूं सारे ब्रह्म कुमारी परिवार का, विश्व परिवार का, जिन्होंने आज मुझे माउंट आबू में बुलाया, आबू रोड बुलाया और माउंट आबू बुलाया। 45 साल के बाद मैं मानती हूं कि बहुत अच्छे इनविटेशन पहले बार बार आते रहे, लेकिन भाग्य की बात है, समय की बात है कि नजदीक होते हुए मैं नहीं आई, लेकिन आज दूर से पौंडिचेरी से आई हूं 45 साल के बाद। मैं 45 साल इसलिए बोल रही हूं क्योंकि माउंट आबू में नेशनल पुलिस एकेडमी थी, तो 1972 में मैं यहां आकर भर्ती हुई थी और यहां मेरी पहली ट्रेनिंग पुलिस की यही हुई थी। बहुत मन करता था वापस अपने पुलिस ट्रेनिंग नेशनल पुलिस एकेडमी वापस आने का। इन्विटेशन एक बारी नहीं, बहुत बारी आया, अपनी बहनों से आया, भाइयों से आया, लेकिन समय की बात है, अपने आप से भी पूछना जरूरी है पहले क्यों नहीं आई। मैं एक और कारण भी आई हूं, या मुख्य कारण आभार प्रकट करने आई हूं। आभार तमाम भाइयों और बहनों का, ब्रह्म कुमारी भाइयों और बहनों का, जिन्होंने सारा जीवन मेरे साथ साथ निभाया है। कहां से शुरू हुआ, जब मैं स्कूल में थी, अमृतसर की शहर की लड़की हूं, तब मैं बहनों को देखती थी सफेद पोशाक में, पवित्रता की मूर्ति में सेवा करती थी समाज में, तब मैं एज स्कूल गर्ल आपको देखती थी और मुझे मालूम था कि ब्रह्म कुमारी बहनों का और भाइयों का कितना असर होता है जब वो किसी के साथ संपर्क करते हैं, मैंने देखा था। इसलिए मुझे पहली याद आती है 1993 में, जब मैं इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन तिहार जेल बनी थी। पहले दो दिन में जब मैं 10,000 कैदियों को दिल्ली में देखती थी और मैं देखती थी कि कितने असंतुष्ट थे, एज ए पुलिस ऑफिसर तो मैं देखती थी, लेकिन मुझे उनके हल नहीं पता थे कि मैं इनको सोल्यूशन क्या दूं, इनको दवा क्या दूं। दवा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन दवा तो मैं दे सकती हूं कहीं से कहीं, कहां से दवाई लाऊं। तो मैं दूसरे ही दिन मैंने ध्यान में आया कि मैं वापस अपनी बहनों के पास क्यों नहीं जाऊं, क्यों नहीं ब्रह्म कुमारी को तो फिर से प्रार्थना करूं सारी संस्था को कि क्या अपनी ये जेल को संभाल सकते हो। तो मुझे याद है कि बिल्कुल तिहार जेल के नजदीक हमारी हरिनगर की शाखा है, वहां मेरी बहन शुक्ला और वो भी अमृतसर की है, और मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने एक दिन भी नहीं जाया किया और वो अगले दिन अपनी फौज के साथ जेल के आ गए, जेल के अंदर आ गए। और मेरी बहन शुक्ला और इन्होंने रोज शाम को बिना रुकावट के वहां सत्संग किया। साथियों, कमाल का चमत्कार मैंने देखा, लड़ाई झगड़े कम होने लगे, द्वेष खत्म होने लगे, बदले की भावना खत्म होने लगी, तंबाकू और सिगरेट पीना कम होने लगा और एक नई विचारधारा जेल के अंदर आई। लेकिन मेरा साथ आपका सिर्फ जेल तक नहीं सीमित रहा, फिर मैं पुलिस ट्रेनिंग में जब गई, वही सिचुएशन मैंने पुलिस ट्रेनिंग में देखी। फिर से मैं अपनी बहनों के पास आई, फिर से ब्रह्म कुमारी संस्था के पास आई कि फिर से मेरी मदद करो। पुलिस ऑफिसर्स भी एक जेल में है, क्योंकि वह अपने जेल में है, वो तो कैदी शहर के जेल में थे, अपनी तो जेल में थे इसीलिए अपराध किया था, लेकिन वो उनकी आजादी सीमित इसलिए की गई ताकि वो दोबारा अपराध ना करें और समाज सुरक्षित रहे। लेकिन हम पुलिस ऑफिसर्स और हम व्यक्ति अपने आप में भी एक जेल बनाते हैं अपनी विचारधारा से, तो मेरे पुलिस ऑफिसर्स भी तनाव में थे। जब तनाव में रहते हैं तो हम अपने आप को एक जेल बनाते हैं। तो मैंने फिर से अपनी बहनों को रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, वापस आइए, पुलिस ऑफिसर्स को भी आपकी सख्त जरूरत है। तो मैं आभार प्रकट करने आई हूं, आपने मेरा जेल में भी सहायता की, आपने पुलिस ट्रेनिंग में भी सहायता की, उसके बाद स्वयंसेवी संस्थाओं में जब मैं काम करने की अपनी मेहनत करनी शुरू करी, इसी प्रकार आपने स्वयंसेवी संस्थाओं में, गांव में, स्कूलों, स्लम्स में और जगह जगह आके बच्चों को शिक्षित किया। इसलिए दो आभार, एक कि मुझे आप वापस माउंट आबू लाए हो 45 साल के बाद, और दूसरा जो आपने मेरे काम में जहां जहां मुझे सफलता प्राप्त हुई आपका आशीर्वाद रहा और आपकी सेवा रही। मेरे लिए ब्रह्म कुमारी परिवार स्टैंड करता है प्योरिटी के लिए, मेरे लिए आप प्योरिटी की मूर्ति है। ये सारी संस्था एक एक व्यक्ति, एक एक बहन, एक एक भाई प्योरिटी स्वच्छता के लिए स्टैंड करता है, सिंप्लिसिटी के लिए स्टैंड करता है, ईमानदारी के लिए खड़ा है। इसलिए तो 80 साल बिना किसी स्कैम के, स्कैंडल के आप इतना फैल गए सारी दुनिया में, जहां आपका आपने एक पहचान बनाई। यही तो मूल्य है, यही तो मूल्य है जो हमें इस देश का आधार बने हुए हैं और देश को बचा रहे हैं। प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, क्योंकि ये हमारा विश्वास, ईमानदारी, सेवा, तमाम अंथक सेवा, कुर्बानी, आप अपना अपना कई चीजें छोड़ के हम लोग समाज में आप सेवा करते हैं। चरित्र जबरदस्त, स्ट्रांग कैरेक्टर, ह्यूमैनिटी, आप मानवता के लिए खड़े होते हैं। आप ब्रह्म कुमारी समाज ऐसा समाज मानवता सिखाता है। मानवता की बात हुई तो मुझे याद है कि जब 20 साल की उम्र में मैंने इंडियन पुलिस सर्विस का इम्तिहान दिया तो मैंने फॉर्म भरा, इंडियन पुलिस सर्विस का फॉर्म था, उस फॉर्म में था तुम्हारा धर्म क्या है, रिलीजन। तो रिलीजन वक्त मेरी कलम रुक गई, तब तो मैंने सबको बाकी चीजें लिख दी, रिलीजन का मैं क्या लिखूं, क्योंकि मैं अमृतसर में एक कैथोलिक स्कूल, सेक्रेड हार्ट स्कूल से पढ़ी हूं। मेरी दादी सिख परिवार, मेरे पिता, मेरे डैडी, मेरे दादा और मेरे नानका हिंदू परिवार, वो पहले खूब गायों को, गायों को खिला के 200 को लोगों को खिला के खाना खुद खाते थे। तो अमृतसर में क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी, दादी मेरी सिख परिवार, मेरे नाना और मेरे दादा हिंदू परिवार, ये तीनों ऐसे, बाकी समाज तो मुसलमान समाज आसपास था अमृतसर में, तो मिलके सम रहते हैं। तो मैं रिलीजन क्या लिखूं इंडियन, और उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, सोचू क्या लिखूं। कभी मैं मॉर्निंग में चर्च में भी जाती थी, दादी के साथ दरबार साहब भी जाती थी, नानी के साथ दुर्गियाना मंदिर भी जाती थी, और तो मैं क्या लिखूं। तो मैंने लिखा, अंग्रेजी में लिखा ह्यूमैनिटी, रिलीजन लिखा ह्यूमैनिटी। और मुझे याद है कि जब मेरी इंडियन पुलिस सर्विस में के लिए इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बहुत पूछा कि क्या मैंने बनावटी तो नहीं लिख दिया ह्यूमैनिटी नंबर लेने के लिए, क्या मैंने जान के इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं लिखा ह्यूमैनिटी। लेकिन मैंने फिर जब इंटरव्यू बोर्ड को बोला कि मैं सच्ची में मानवता में विश्वास करती हूँ, यही संस्कार मुझे मेरे माँ बाप ने दिए हैं और मेरे बड़ों ने दिए हैं, मैं मानवता में विश्वास करती हूँ और ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करती हूँ किसी रूप में भी है, तो मुझे याद है मेरा विश्वास है कि मेरा ये जवाब ही मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में लाया, क्योंकि इसमें मुझे इंटरव्यू में बहुत नंबर मिले और शायद यही चीज मुझे मेरी जिंदगी भर के लिए मुझे उसने मिशन दिया। तो साथियों, ब्रह्म कुमारी मेरे लिए प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, प्रेम, लव, क्योंकि आप प्रेम की मूर्ति हैं जहां जहां आप जाते हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब मेरी शुक्ला बहन और इनकी मेरी बहनें जेल में आती थी, किस प्रकार हर व्यक्ति इनके पांव छूता था, क्योंकि आप प्रेम देती थी, आप आशीर्वाद देती थी, कंपैशन, आप फॉरगिवनेस भी बहुत देती थी, आप ज्ञान भी देती थी, आप शांति तो है ही, क्योंकि आप ओम शांति हमेशा कहते हैं। तो ये मेरे लिए परिवार, यही मूल्य इस देश को और इस दुनिया को चाहिए, जो कि ब्रह्म कुमारी एक उदाहरण है। पिछले 80 ईयर से आप इसका, इसको गहराई तक आप रूटेड, इसको रूटेड करो, इस मॉरल वैल्यूज को इस देश में रूट्स में आ चुकी है, ये रूटेड है, क्योंकि आप हर एक परिवार इस मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं अपनी तीन छोटी बातें इस इंट्रोडक्शन के बाद रखना चाहती हूं। एक तो एक सच्ची स्टोरी, एक सच्ची स्टोरी ये है कि एक सेंटर में एक व्यक्ति गया जर्नलिस्ट, और वो जर्नलिस्ट जब गया तो उस सेंटर में जो लोग थोड़ी मानसिक कमी के वजह से वो थे, उसको मेंटल मेंटल होम भी कह सकते हैं, असाइलम भी कह सकते हैं, ऐसा ग्रह था जहां लोग मानसिक तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलाज करने आए थे। तो एक व्यक्ति फिलॉसफी की बुक पढ़ रहा था, तो वो जर्नलिस्ट उस व्यक्ति के पास गया, उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम इधर इलाज के लिए नहीं आए हो, तुम कुछ कुछ और हो, बताओगे तुम यहां क्यों आए हो, तुम किताब पढ़ रहे हो, लगता नहीं है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन तुम क्यों आए हो? तो उसने कहा, और ये सच्ची स्टोरी है, मैं उस व्यक्ति का नाम आपको अभी बताती हूं वो कौन था। तो फिलॉसफी की बुक पढ़ रहा था, तो उसने कहा मैं इसलिए यहां आया हूं क्योंकि मेरे पिताजी मुझे कह रहे थे उनके जैसे डॉक्टर बनो, मेरी मां कह रही थी पिताजी जैसे बनो, और मेरे अंकल कह रहे थे मेरे जैसा धनी बिजनेसमैन बनो, और मेरी बहन कह रही थी मेरे पति जैसे, मेरे जीजू जैसे बनो, सभी जने मुझे कह रहे थे तुम ऐसे बनो या वैसे बनो। मैं परेशान हो गया सुन सुन के, कोई मेरे से ये नहीं पूछ रहा था मैं क्या बनना चाहता हूं। तो मैं पहले इसलिए मैं यहां आया क्योंकि पहले मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, मैं इसलिए उनको छोड़ के आया क्योंकि पहले मैं मानवता सीखने आया, मैं एक इंसान बनना चाहता। इस उस आदमी का नाम था खलील जिब्रान। उसने कहा, और वो फिलॉसफी की बुक पढ़ रहा था, उसने मानवता का पाठ सीखने आया, मैं मानवता को समझने आया हूं, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, पहले मैं समझती हूं इस देश को एक सख्त जरूरत है इस मैसेज की। मैंने देखा है 12वीं, 9वीं, 10th स्टैंडर्ड से ऑनवर्ड्स इतना प्रेशर हमारे नौजवान लड़की और लड़के पर आ जाता है कि तुमने ये प्रोफेशन लेना है, चाहे हुक या क्रुक जी, चाहे 24 घंटे तुम कुछ नहीं और सीखो, परेशान भी आप, कोई मूल्यों की बात नहीं है, तुम पहले मुझे एक प्रोफेशनल बन के दिखाओ ताकि जल्दी गाड़ी मिले, तुम्हारे पास घर हो, तुम्हारी तनख्वाह अच्छी हो, तुम्हारा नाम हो, हम कह सके ये मेरा बेटा है, फलाना इस इंजीनियर है, ये ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर है या फलाना। हम इंसानियत, उसको इंसानियत जब बनाएंगे, इंसानियत सिखाएंगे, वो अच्छा इंजीनियर भी बनेगा, अच्छा डॉक्टर भी बनेगा, अच्छा पुलिस ऑफिसर भी बनेगा, अच्छा पॉलिटिशियन भी बनेगा, अठावले साहब जैसा एक कुर्बानी व्यक्ति भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, वो कोई भी रास्ता अपना, लेकिन इंसानियत नहीं भूलेगा, इंसानियत के आधार पे उसका काम रहेगा। मेरा यही मैसेज, क्योंकि इंसानियत आज इस देश को, हर व्यक्ति, हर बच्चे को, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग अभ्यास और योग एजुकेशन लाए, क्योंकि वो शुरू, जब हम स्कूल में शुरू करेंगे मेडिटेशन, स्कूल में शुरू करेंगे योग अभ्यास से, शांति से, मैसेजेस से, तो हमें वो मूल्य पहले हमारा आधार बनेंगे, फिर हम लोग अपने प्रोफेशन की तरफ जाएंगे। ये एक देश परिवर्तन की तरफ जा रहा है। हाल ही में साथियों आपको खुशी होगी कि मेरी पांडिचेरी गवर्नमेंट ने योग अभ्यास को स्कूल की एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए अनिवार्य एक डिसीजन ले लिया है, और हमारी अब स्कूल की एजुकेशन में योग अभ्यास अब एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन है। मैं जब आने से पहले इस ऑर्डर को साइन करके आई, तो ये एक बहुत लंबी शुरुआत है। और जब आप कह रहे थे कि वर्ल्ड शांति पीस कब बनेगा, उसका आधार योग ही होगा, योगा से एक आगे की शाखाएं खुलेंगी, जितना हम योगा को अपना हिस्सा बनाते जाएंगे, उसमें शांति और अपनी स्थिरता लाते रहेंगे, आपका हमारा सबका सपना जरूर पूरा होगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ साल जो योग एक रूट है उसके लिए, जो कि जून 21 इज एन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जितना ये फैलता जाएगा उतना भला इस देश का, दुनिया का जरूर होता जाएगा, उसमें उसका हिस्सा, उसका हक, उसके हम सब एम्बेसडर हैं। हम ब्रह्म कुमारी हैं, लेकिन हम योगा के और साथ साथ उसके असली एम्बेसडर हैं, क्योंकि हम उस भी जहां इंडियन जाता है वो योग के लिए स्टैंड आउट करता है, क्योंकि इंडियन को पता, दुनिया को, वेस्टर्नर को पता है इसको तो योगा आता ही है, क्योंकि ये योग से ही पैदा हुआ है, ये योग से ही उगा है, इसमें सारे संस्कार ही योगा के, इसलिए हमको किसी को कहना नहीं पड़ता कि मुझे योग आता है, सिर्फ हमको उसको योगा अभ्यास और योग को समझना जरूरी है। मेरा दूसरा रिक्वेस्ट यह है कि हम सब समाज सेवा में लगे हैं, लेकिन समाज सेवा के साथ जो पॉलिसी मेकिंग है, हमारी पॉलिसी डिसीजंस हैं, वो है गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथ में। हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो पावर है, फाइनेंशियल पावर है, पॉलिसी मेकिंग पावर है, रूल मेकिंग पावर है, लॉ मेकिंग पावर है साथियों, वो समाज सेवा में नहीं है। समाज सेवा ओपिनियन देता है, समाज सेवा एक प्रेशर बनाता है, लेकिन जो डिसीजन मेकर है वो है गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी मुलाजिम। दो जने सरकार को के निर्णय लेते हैं, एक तो मंत्री लोग, पॉलिटिशियन जब वो इलेक्ट होके जाते हैं तो वो उनके पास बजट होता है, कानूनी अधिकार होता है, वो चर्चा करके पब्लिक की राय लेके कानून बनाते हैं। एक तो वो असली अधिकारी पब्लिक सर्विस के पॉलिसी मेकिंग के होते हैं। हम सबके बस का नहीं है पॉलिटिक्स में जाना, हम सबके बस का नहीं है किसी पार्टी के हिस्सेदार बनना, हम सबके बस का नहीं है इलेक्शन लड़ना। सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, सबकी अपनी अपनी ओरिएंटेशन होती है, लेकिन अगर इस देश को बदलना है, अगर इस देश को बदलना है, अब मैं इसको दोबारा इसलिए कह रही हूं, अगर आज प्रधानमंत्री जी को हमने सफल बनाना है, आज अगर इस देश को हमने एक नई न्यू इंडिया की तरफ ले जाना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं न्यू इंडिया, न्यू इंडिया हमसे तो बनेगा, समाज सेविकों से तो बनेगा, लेकिन असली बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट से, प्रशासन से, जो कि गवर्नमेंट का अधिकारी है, जो सरकार का मुलाजिम है। पब्लिक सर्वेंट चाहे वो सिपाही है, चाहे वो डीजीपी है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो इनकम टैक्स का छोटा ऑफिसर है, वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, वो सभी को अपना हिस्सा बांट देना होगा। तो मुझे आपको क्या कहना है, मुझे ये कहना है कि आप यूनिवर्सिटी हैं, जब तक हम अपने बच्चों को सरकारी प्रशासन के लिए तैयार नहीं करेंगे, और ब्रह्म कुमारी के बच्चे, लड़के हो या लड़की, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, बिजनेसमैन बने, लेकिन साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, वो इंडियन पुलिस अपनी पब्लिक सर्विसेज में इम्तिहान लें, जब ऐसी विचारधारा के लोग औहदे पे बैठेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, कस्टम्स ऑफिसर बनेंगे, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे, कोई भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, सरकारी मुलाजिम बनेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स हर एक के बस का नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह रही चलो अपने बच्चों को राजनीति में भेजें, क्योंकि राजनीति सबका बस नहीं है, ये एक बहुत अपने तरीके की कुर्बानी और मेहनत मांगता है, अपने तरीके का एक कैरेक्टर मांगता है, लेकिन पब्लिक सर्विस जो है वह मेरिट मांगती है। पॉलिटिकल लाइफ में हमेशा बेस्ट आदमी नहीं इलेक्ट होके आता, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो आता है, जो कई बार जो ज्यादा गुणवान होता है वो रह जाता है, क्योंकि पब्लिक उसको पहचानती नहीं है। आपको याद है एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो वो हार गए थे, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या उससे ज्यादा उत्तम और नॉब कौन मिल सकता, लेकिन वो जीते नहीं थे। सो इलेक्शन में कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग हमेशा बेस्ट व्यक्ति, मेरिटोरियस व्यक्ति को ही इलेक्ट करें, हर तरीके के लोग आते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी लोग आते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, वो मेरिट से ही आएगा, और उसमें लड़की और लड़के में भी भेदभाव नहीं है, लड़की और लड़के में भी भेदभाव नहीं। मैंने ये देखा है कि हम लोग जो सोशल वर्क में हैं, हम अपनी बच्चियों को और ऐसी इंस्टीट्यूशंस, एक सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज का, पुलिस सर्विसेज का, बैंक सर्विसेज का, ऐसी सर्विसेज का जो हमारे सर्विसेज के एग्जाम होते, एक सेंटर खोलें, और उस सेंटर में ऐसे ब्रह्म कुमारी, ये जो हमारी नई पनीरी है जो पब्लिक सर्विस में जाना चाहती है, उसको पढ़ाएं, उसको मेहनत करके मेरिट पे जिताएं, उसको सफल कराएं। जब हमारी पनीरी, हमारी ऐसी प्योरिटी, ईमानदारी, सेवा भाव के लोग जब पब्लिक सर्विस में ज्यादा आने लगेंगे, सब जने काम करने लगेंगे, ईमानदारी देश में बढ़ जाएगी, और कोई गारंटी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई गारंटी होनी चाहिए ईमानदारी की, सच्चाई की, ईमानदारी की और चरित्र की हमारी पब्लिक सर्विस, और एक संवेदनशीलता की, तो उसके लिए तो ये मूल्य उसके साथ जाएं। अभी तो सिर्फ नंबरों की मेरिट है, अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैरेक्टर नहीं चुना जाता, कैरेक्टर तो तब पहचाना जाता है जब एक गरीब आदमी उस ऑफिसर के सामने आता है, तो क्या वो किस तरीके से उस गरीब आदमी की सेवा करता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, उसको समय देता है कि नहीं देता है, उसकी पहचान करता है कि नहीं करता है, उसका काम भी करता है कि नहीं करता है, कि सिफारिश नहीं करता है, जिसकी सिफारिश आ गई तो हो गया, जिसकी सिफारिश नहीं आई तो चला गया। यहां यह देखता है कि इसकी अगर मैं मदद करूंगा तो मुझे क्या इससे मिलेगा। वो सरकारी काम को बिजनेस बनाता है, सरकारी काम को बिजनेस नहीं बनाना है, सरकारी काम को सेवा देना है। और वो सेवा भाव आधार से आता है, वो नर्चरेंस से आता है, वो अपने माँ बाप से आता है, माँ बाप ने उनको क्या संस्कार दिए, संस्थाओं से आता है। तो मेरा एक सुझाव है, ये सुझाव मैंने पहली बार ही नहीं दिया है, अब मैं जिस संस्थाओं में भी जाती हूँ मैं उनको यही कहती हूँ अपनी लड़कियों को। एक मैं पीछे विमेन्स कॉलेज में गई और वो विमेन इतनी लड़कियां लायक, बहुत लायक पढ़ाने में लायक, वो विमेन्स कॉलेज था, लेकिन मैंने उनसे पूछा आप में से कितनी लड़कियां गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगी, सरकार की सर्विस में जाएंगी। कुछ हाथ नहीं खुले खड़े हुए, क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं था करियर डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, हमको कौन पढ़ाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है दिल्ली में जाके या चेन्नई में जाके या बेंगलोर में जाके या हैदराबाद में जाके या चंडीगढ़ में जाके, जहां ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के या स्टेट सर्विसेज के या बैंक्स के या रेलवेज के, सरकारी नौकरी हर जगह सेम है, जरूरत हर जगह सेम है, वे कैसे जाएं? क्योंकि वो हर प्राइवेट ट्यूशन इतना पैसा देना पड़ता है, वो महंगा है, उसमें प्रोफेसर होते हैं वो अपना समय देते हैं, उसकी कॉस्ट है। आप जीरो कॉस्ट पे अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन आप खोलेंगे, संस्थाएं खोलेंगी, मैं समझती हूँ अच्छे लोग आने लग जाएंगे और ऐसी सेवा होने लग जाएगी और आपके विचार हमारे विचार फैलेंगे। तो ये मेरा दूसरा सुझाव था कि हम अपनी अपने बच्चों को, माँ बाप तो हैं अच्छे, क्योंकि अच्छे इंसान अच्छी इंसानियत की तरफ जा रहे हैं, हम अपने परिवार को तो अच्छे इंसानियत के रोल मॉडल तो देंगे, तो बच्चों को हम मेरिट से काबिलियत से सरकार की सेवा में लाएं तो ही देश बदलेगा। न्यू इंडिया सिर्फ पॉलिटिशियन से नहीं आएगा, इंप्लीमेंटर से आएगा, और इंप्लीमेंटर जो होता है वो अफसर होता है जो सेक्रेटेरिएट में बैठता है, चाहे वो किसी भी जॉब का हो। तीसरी चीज और लास्ट सजेशन है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल केयर के लिए बोला, चाइल्ड हेल्थ के बारे में बोला, न्यूट्रिशन के लिए लाइंस के लिए बोला, और मेरे परमादरणीय भाई ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ 5 पॉइंट्स बोले, उसमें हेल्थ के बहुत इश्यूज थे। लेकिन मेरे मन में एक इश्यू आया है जो कि मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से आया है और वो आता ही आ रहा है, वो ये है कि इस वक्त क्योंकि फैमिली छोटी होती जा रही है, जो बड़े लोग हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, जो उम्र और उनके छोटी फैमिली की होने की वजह से बच्चे बाहर चले गए या घर में नहीं है या सारा दिन बाहर काम करते हैं, अगर वो बीमार होते हैं उनकी देखभाल के लिए परिवार में कोई नहीं है, और कई तो इतनी ज्यादा बीमार हैं कि वो है टर्मिनली इल, जैसे कैंसर की प्रॉब्लम है, जहां कैंसर इश्यूज में वहां पैलिएटिव केयर चाहिए। पैलिएटिव केयर का मतलब है कि जब हमारे पास दवाई नहीं है तो प्यार मांगता है, केयर मांगता है, सुरक्षा मांगता है, बातचीत मांगता है, दुख बताना मांगता है, उसको है पैलिएटिव केयर। कई दूसरे देशों में हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, उसमें पैलिएटिव केयर है। साथियों, मैं समझती हूं हमसे बेटर कोई नहीं है, हमारी बहनों और भाइयों से बेटर पैलिएटिव केयर के लिए कोई भी नहीं है। वो ऑलरेडी उनकी जो पोशाक, उनकी जो प्रेजेंटेशन, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पैलिएटिव केयर है। अगर हम अपने अपने आस पड़ोस में देखें कि कौन से बड़े लोग हैं, कौन से ऐसे हैं जिनको हमको पैलिएटिव केयर चाहिए, और हम जाके उनका हाथ पकड़ के अपने अपने नेबरहुड में, अपने अपने आस पड़ोस में ये सेवा अगर दे सकें जिसको पैलिएटिव केयर करते, इसके लिए धन के बजट्स नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ भावना चाहिए, इसमें सिर्फ मानवता चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कमी है इस देश में। मैं तीनों चीजें वही लाई हूं जो मैं समझती हूँ वैक्यूम्स हैं, क्योंकि आपके पास, हम सब के पास बहुत सारे विद्वान स्पीकर्स आ चुके हैं, मुझे मालूम नहीं पहले उन्होंने क्या क्या अपनी अपनी अपने विचार प्रकट किए, लेकिन ये तीन विचार ऐसे समूह, ऐसे परिवार के लिए मैं अपने आपके समक्ष रख रही हूं कि पैलिएटिव केयर, विच मीन्स इवन द ब्रह्म कुमारीज को टेक अप सीनियर जो एज बड़े एज के हैं, जहां उनको हेल्प चाहिए, हम उनको होम विजिट में रखें, उनको आशीर्वाद दें, उनको उनका दुख बांटें, उनका दुख दूर करें। आपके जाने से ही, आपके जाने से ही उसका आधा दुख दूर हो जाएगा। आज बहुत घरों में, और इंडिया यंग नेशन भी है, इंडिया एक एजिंग नेशन भी है, जैसे हमारे पास युवा नेशन युवा बढ़ गई है, ऐसे बड़े होते हुए हमारी एजिंग जेरियाटिक केयर की बड़ी सख्त जरूरत है। गवर्नमेंट के सिर्फ एक्सपेंडिचर से नहीं चलेगा, सिर्फ दवाई नहीं चाहिए, उनको दुआ भी चाहिए। आप जाइए उनके पास, बैठिए और उनको दुआ दीजिए। दवाई डॉक्टर देगा, आप उनको दुआ दीजिए, उनका दुख थोड़ा सा दूर करिए, ताकि लोग पूछें, बड़े कहें, अरे पूछो कोई ब्रह्म कुमारी बहन या भाई है यहाँ मेरे पड़ोस में, हमारे बड़े लोग पूछे तो उनको बुला दो, मुझे आकर मिल जाए, मेरा थोड़ा सा दुख दूर कर दें। तो साथियों, मैं तीन विचार आपके समक्ष रख के जाना चाहती थी। मैं आपका जैसे भी कहूं, मैं आभार प्रकट करने आई हूं, जो आपने इतने साल मेरी सर्विस में, और अब पांडिचेरी से भी हम लिंक्ड हैं हमारी बहनों के साथ, हम जुड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे इसको और भी आगे ले जाने की, ताकि ये मानवता, यही जैसे योग अभ्यास मैंने बताया पांडिचेरी के स्कूलों में आएगा, तो मेरी ब्रह्म कुमारी बहन शाखा जो हमारी पांडिचेरी की है, उसका और भी प्रचार करे, ये मेरा सपना है, ये मेरी भावना है, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत अति धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर। आप सभी से अनुरोध है कि आप 5 मिनट और बैठे रहें। बहुत अच्छे भाव थे कि मुस्लिम को कुरान में ईमान न मिला, हिंदू को गीता में भगवान न मिला, उस इंसान को आसमान में क्या भगवान मिलेगा जिस इंसान को इंसान में इंसान न मिला। तो सबसे पहले हम इंसान तो बन जाएं। अभी बहुत ही सुंदर आदरणीय किरण बहन के द्वारा विमोचन होने जा रहा है, लेकिन एक सूचना देने जा रही हूँ कि 9 बजे भव्य सांस्कृतिक संध्या आनंद सरगम, रात 9 से 10 बजे शक्ति निकेतन इंदौर हॉस्टल की कुमारियों की प्रस्तुति रहेगी। अभी थोड़े देर आप बैठे रहें। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जल्द से जल्द भोजन करके हॉल में पुनः आएंगे। अभी स्मारिका का विमोचन, प्रेरणा का विमोचन महामहिम किरण बेदी जी के द्वारा, साथ ही हमारी मैं भी, मंजू बहन भी, कि चलो विश्व योग करें, जीवन खुशियों से भरे, चलो विश्व योग करें, इसकी भी कैसेट का विमोचन हो रहा है। तो अभी हमारे भाई जी प्रेरणा के विमोचन के बारे में कुछ बात करेंगे, और किरण बहन ने जो योग के बारे में बात करी, उसकी भी कैसेट का विमोचन हो रहा है।
ओम शांति। अभी जो स्मारिका का विमोचन होने जा रहा है, उसका नाम है प्रेरणा। ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर द्वारा लोकल लेवल पर जो स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, व्यसन मुक्ति, महिला सशक्तकरण, ऐसे कई सोशल प्रोग्राम आयोजित करते हैं, उसका सारा सेवा समाचार इस स्मारिका में है, जिसका विमोचन हमारे महामहिम किरण बेदी जी द्वारा हो रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ सामाजिक जागृति का कार्य भी ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा पूरे विश्व में, भारत में भी, और माउंट आबू और आसपास के एरिया में काफी सक्रियता के साथ किया जाता है। तो जिसका विमोचन हमारे किरण बेदी जी अपने कल कमरे द्वारा कर रहे हैं।
भ्राता अतुल जी का, डायरेक्टर गोपी कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, बहुत ही सुंदर सम्मान और स्मारिका, और जो बात हमारी किरण बहन ने रखी योग के ऊपर, जीवन खुशियों से भरे, चलो विश्व योग करें, चलो हम सब मिलकर योग करें, इसका भी विमोचन हुआ और प्रेरणा का भी। अभी डायमंड हॉल के सेवाधारी भाई बहन भी रुकेंगे क्योंकि अंत में नेशनल एंथम भी अभी होगा, हमारे अतिथि अभी उपस्थित हैं, इसलिए सभा से अनुरोध है कि वो कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें, ये भी अतिथि का सम्मान है। अभी मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए भ्राता हरीश भाई को आमंत्रित करती हूँ, हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटर विंग RERF, भ्राता हरीश भाई।
ओम शांति। आप सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। और एक रिक्वेस्ट है, दो मिनट के लिए आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए, क्योंकि हम सब की फर्ज है कि हमारे घर में आए हुए मेहमानों का हमें आभार प्रदर्शन करना चाहिए। प्लीज केवल तीन मिनट, दो मिनट के लिए आप बैठ जाइए, उसके बाद आप भोजन पर जा सकते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये महासम्मेलन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है, और आज का ये सत्र जो आप सभी देख रहे हैं, जिसमें विशेष पांडिचेरी से महामहिम राज्यपाल श्रीमती किरण बहन बैदी जी हमारे बीच उपस्थित हुई है, और उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक विचार हम सबके समक्ष रखे हैं। जोरदार तालियों के द्वारा हम राज्यपाल महोदया का धन्यवाद अदा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे बीच जो दिल्ली से पधारे थे ऑनरेबल मिनिस्टर रामदास बंधु अठवाले, उन्होंने भी अपने विचार और प्रेरणाएं हम सब के समक्ष रखी है, उनके लिए भी जोरदार तालियों से हम धन्यवाद अदा करेंगे। और मंच पर विराजित हमारे अन्य वरिष्ठ भाई बहने हैं, जैसे संतोष दीदी है, आदरणीय निर्वेर भाई साहब है, ब्रिजमोहन भाई, मृत्युंजय भाई, दिव्या बहन, पूनम बहन, लक्ष्मी बहन आदि सभी भाई बहने, पांड्यामणि भाई, गोलो भाई, उन सब ने अपने विचार हम सबके समक्ष रखे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा उन सब के लिए भी जोरदार ताली बजा करके हम धन्यवाद अदा करेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि आप सभी भाई बहने इतने दूर दूर से यहाँ पधारे हैं, और आप सबके आने से ही सम्मेलन में चार चांद लगा है, तो आप सभी का भी मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सभी भी अपने लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए। और आप सभी भाई बहनों को यहाँ पहुंचाने वाले जो हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहने हैं, जिन्होंने खास आपको निमंत्रण दिया, यहाँ बुलाया, और आप सब चार दिन से इतना अच्छा लाभ ले रहे, उन सभी बीके भाई बहनों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। और इस सम्मेलन को सफल करने के लिए कई हमारे बीके भाई बहने, सेवाधारी भाई बहने भी आए हैं, और आप सभी देख रहे हैं हमारे शांतिवन, मधुवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल आदि के सभी भाई बहने, और जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो भोजन का हो, चाहे आवास निवास हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे लाइट साउंड, जितने भी डिपार्टमेंट, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इन सर्व के सहयोग से ये सम्मेलन सफल हुआ है, तो उन भाई बहनों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और जो मधुरवाणी ग्रुप है या डांस के लिए हमारी कन्याएं यहाँ आप सबके समक्ष उपस्थित हुई और आप सबका मनोरंजन भी किया है, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। और नामी अनामी कई भाई बहनों का सहयोग इस कार्यक्रम के लिए मिला है और मैं तो ये कहूंगा कि इन सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का, और साथ में हमारी वरिष्ठ दादियां दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी, दादी रतन मोहिनी जी, और हमारे वरिष्ठ भाइयों का बहनों का। सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी ने देखा कि हमारे जितने भी भारत के जोन इंचार्ज सब जोन इंचार्ज मुख्य भाई बहनों का स्वागत भी हुआ, सम्मान भी हुआ, सब लोग उपस्थित होकर के अपनी प्रेरणाएं भी दिया है, आशीर्वाद दिया है, उन सब के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
अब कार्यक्रम के अंत में हरीश भाई का भी मैं बहुत दिल से थैंक्स देती हूँ और आप सभी का भी। हम दो मिनट परमपिता परमात्मा की दिव्य स्मृति में बैठेंगे। अंत में आपसे यही कहती हूँ कि फूल की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, ये विद्यालय तो केवल राह दिखाने वाला है, देने वाला हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको।
लोगों का धन्यवाद मुझे खास करना होगा। एक तो मीडिया के कई भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है, साथ ही पीस ऑफ माइंड चैनल जो हमारे करुणा भाई, रवि भाई, हरिलाल भाई की पूरी टीम ने ये पूरा ही सम्मेलन को लाइव टेलीकास्ट भी किया है, पूरे भारत और वर्ल्ड में सब देख रहे, उन सभी मीडिया के भाई बहनों का, पीस ऑफ माइंड चैनल के सभी भाई बहनों का भी हम जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद अदा करेंगे। थैंक यू।
हर बालक तक कृष्ण कन्हैया सा राधा सी हर पाला होगी सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी
राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएंगे
Mataram. Mataram.